दर्शन किया बाद में लोंगिनुस प्रथम या तृतीय शताब्दी ईस्वी का वाचन सुनिए। लोंगिनुस अंग्रेजी उच्चारण के अनुसार लोंजाइनस कब और कहाँ हुए यह निश्चित नहीं है। कभी कभी यह भी संदेह व्यक्त किया जाता है कि इस नाम का कोई व्यक्ति वस्तुतः हुआ भी या नहीं, किंतु परंपरा ने इस नाम का संबंध एक अत्यंत महत्वपूर्ण काव्य सिद्धांत के साथ जोड़ रखा है, जिसे उद्दात नाम से अभिहित किया गया है। लोंगिनुस जन्म से यूनानी थे। उनका समय ईसा की प्रथम या तृतीय शताब्दी माना जाता है। इन दोनों में किसी एक के पक्ष में निर्णायक प्रमाण नहीं है। यह बहुमत प्रथम शताब्दी का समर्थक है। ऐतिहासिकता का दंभ करने वाले और भारतीय इतिहास बोर्ड की कमजोरी दिखाने वाले पश्चिम में भी इतिहास की क्या स्थिति रही है, इसका यह सुंदर उदाहरण है। लोंगिनुस के नाम से जो ग्रंथ संबद्ध और प्रसिद्ध है, उसका यूनानी नाम पेरी हुप्सुस है। शताब्दियों की उपेक्षा और विस्मृति के बाद पेरी हुप्सुस 1554 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसका श्रेय रोबेर टेल्लो नामक एक इतालवी विद्वान को है। इसका पहला अंग्रेजी रूपांतरण जॉन हॉल ने 1652 ईस्वी में किया और नाम रखा ऑफ द हाइट ऑफ एलक्वेंस। पेरी हुप्सुस मूलतः भाषण शास्त्र रोटेरिक का ग्रंथ है, इसलिए हॉल का दिया नाम ऑफ द हाइट ऑफ एक्सवेंस वाग्मिता का प्रकर्ष मूल यूनानी के अधिक निकट है। किंतु जैसा सेंट्सबरी ने कहा है कि यह नाम ना तो सुंदर है और ना सुप्रयोज्य। कोई दूसरा शब्द भी उन विप्रतिपतियों से मुक्त नहीं है जो सबलाइम में पाई जाती है। ध्यान में इतना ही रखना है कि सबलाइम को उसके संकीर्ण शैलीगत अर्थ में ग्रहण ना करके उन विशेषताओं से समन्वित व्यापक अर्थ में ग्रहण करना उचित है जिससे उल्लास उत्पन्न होता है। जो कठिनाई सबलाइम में है वही कुछ दूर तक उद्दात में भी है। फिर भी उद्दात में हुप्सुस की उच्चता या उत्कर्ष की द्योतकता वर्तमान है, अतः सबलाइम की तुलना में उद्दात मूल के अधिक समीप है। सबसे बड़ी बात यह है कि अंग्रेजी में सबलाइम और हिंदी में उद्दात इतने प्रचलित हो गए हैं कि इन्हें बदलना न तो शक्य है न आवश्यक। प्रयोग से ही शब्द की अर्थवत्ता पुष्ट होती है। सबलाइम तथा उद्दात में प्रयोग जनित वह पुष्टि आ चुकी है और थोड़ा अर्थ विस्तार कर देने पर ये उस अर्थ के बोधक भी हो जाते हैं जो हुप्सुस से अभिप्रेत है। पेरी हुप्सुस अरस्तु के पेरी पोएटिकेस की तरह काव्य निरूपक ग्रंथ नहीं है। प्राचीन एथेंस या रोम में भी काव्यशास्त्र के समान एक दूसरा शास्त्र भी विकसित तथा लोकप्रिय था, जिसे भाषण शास्त्र रहेटोरिकेस कहते थे। भाषण शास्त्र जैसा नाम से स्पष्ट है भाषण संबंधी शिक्षा का शास्त्र है। क्योंकि एथेंस में लोकतंत्र था और लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोक प्रतिनिधियों का समर्थन प्राप्त करने के लिए अपनी बात को तर्कसंगत तथा प्रभावोत्पादक ढंग से प्रस्तुत करना जरूरी था, इसलिए भाषण कला का एक स्वतंत्र शास्त्र विकसित हुआ। पेरी हुप्सुस का विषय भाषण कला ही है, किंतु कथ्य को प्रभावी बनाना वक्ता और कवि दोनों का लक्ष्य है। दोनों श्रोता और पाठक को प्रभावित नहीं सम्मोहित भी करना चाहते हैं, अतः भाषण शास्त्र और काव्यशास्त्र के प्रतिपाद्य काफी दूर तक समान ही है। अंतर दोनों में इतना ही है कि कवि यदि भावोद्दीपन के द्वारा प्रभावित करता है तो वक्ता तर्क के द्वारा। इसका यह अर्थ नहीं कि वक्ता भावोद्दीपन का सहारा लेता ही नहीं, और न यही कि कवि की उक्ति तर्कहीन होती है। भाव और तर्क की बात केवल प्रधानता के आधार पर है। यही कारण है कि पेरी हुप्सुस भाषण शास्त्र का ग्रंथ होने पर भी काव्यशास्त्रियों के बीच सम्मानित हुआ। पेरी हुप्सुस पत्र के रूप में पोस्टुम्यूस टेरिंटियानुस नामक एक रोमी युवक को संबोधित है जो लोंगिनुस का मित्र था या शिष्य रहा होगा। पत्र की भाषा यूनानी ग्रीक है। केकिलियुस नाम के एक व्यक्ति ने पहले उद्दात का निरूपण किया था, किंतु उसमें लोंगिनुस को अनेक त्रुटियां दिखलाई पड़ी, जैसे एक विषय की परिभाषा का अभाव, दूसरा उन पद्धतियों की विवेचन का अभाव जिनकी सहायता से कोई अपनी शक्ति को विकसित कर उद्दात की ऊंचाई तक पहुंच सकता है, तीसरा भाव जैसे प्रमुख तत्व के निरूपण का अभाव, चौथा उदाहरणों का अनपेक्षित बाहुल्य। केकिलियुस की उस कृति पर लोंगिनुस ने पहले भी कभी टेरिंटियानुस के साथ विचार विमर्श किया था। उसी को विशद रूप देते हुए लिपिबद्ध करते हुए केकिलियुस की त्रुटियों का यथासंभव निराकरण करते हुए लोंगिनुस ने यह रचना की। होरेस के आलोचना की प्रसंग में हमने देखा कि आर्स पोएटिका की रचना भी पत्र के रूप में हुई है। काव्यशास्त्र अथवा भाषण शास्त्र जैसे गूढ़ विषय का पत्र में विवेचन अन्य विशेषताओं जैसे उन्मुक्तता अनौपचारिकता आदि के अतिरिक्त यह भी सूचित करता है कि वेच्य विषय पर लेखक का कितना अधिकार है। पेरी हुप्सुस लगभग 60 पृष्ठों की लघुकाय कृति है, जिसमें छोटे बड़े 44 अध्याय हैं। अध्यायों का आकार बहुत ही असमान है। कुछ अध्याय 2-3 पृष्ठों के हैं तो कुछ केवल 7-8 पंक्तियों के। इसका एक कारण यह भी है कि कई अध्यायों का अंश खंडित है। पूरी पुस्तक का प्रायः 1/3 भाग लुप्त है। मनुष्यों की तरह कृतियों के भी भाग्य सोते जागते रहते हैं। इसके अनगिनत उदाहरणों में पेरी हुप्सुस भी है। 1500 वर्षों तक इसका पता नहीं था। 16वीं शताब्दी के पूर्व इसकी कहीं चर्चा भी नहीं मिलती। काव्य शास्त्रीय इतिहास का निश्चय ही यह बहुत बड़ा सौभाग्य है कि पेरिहूप्सुस जैसी महत्वपूर्ण कृति खंडित रूप में ही सही प्रकाश में आई। विद्वानों ने एक स्वर में इस कृति की और कृतिकार की प्रशंसा की। सेंसबरी के शब्दों में लोंगिनुस तीक्ष्ण साहित्यिक प्रतिभा से संपन्न लेखक था और पेरिहूप्सुस विस्मयकारी कृति आलोचना का कोई विद्यार्थी इस पुस्तक की एक दर्जन पंक्तियाँ पढ़ने के बाद यह अनुभव किए बिना नहीं रह सकता कि वह एक नई दुनिया में है। लोंगिनुस ऐसे व्यक्ति हैं जिनके उत्कर्ष का क्षेत्र अरस्तु से बड़ा है और उनकी प्रतिभा डियोनिसियस अथवा क्विंटिलियन की तुलना में निश्चय ही अधिक शक्तिशाली था। साहित्यिक परिसंशन कहीं अधिक तीव्र है। एलेन टेट ने उन्हें अपूर्ण होते हुए प्रथम साहित्यिक आलोचक माना है। विस्मेट और क्लिंट ब्रुक्स के अनुसार पेरिहूप्सुस एक असाधारण लेख है। एम्ब्रस का कहना है कि साहित्य के उत्तरवर्ती अध्येताओं की दृष्टि में यदि अरस्तु व्यवस्था प्रेमी होड़े सांसारिक और भाषण शास्त्रीय क्षुद्र है तो लोंगिनुस जीवित और आधुनिक है। डेविच डेचेज का मत है लोंगिनुस का महत्व तो इस बात में है कि साहित्य के संबंध में जो प्रश्न प्लेटो या अरस्तु ने उठाए थे उनसे सर्वथा भिन्न प्रश्न लोंगिनुस ने उठाए। लोंगिनुस के संबंध में इस तरह के विचारों की संख्या अनंत है। वस्तुतः 17वीं शताब्दी के बाद का शायद ही कोई आलोचक हो जो लोंगिनुस से अभिभूत न हुआ हो। चूंकि दुर्दैववश लोंगिनुस 1500 वर्षों तक विस्मृत रहा इसलिए उनका महत्व लोगों के सामने ठीक ठीक प्रकट नहीं हुआ, अन्यथा उनके जैसी पैसनी आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि किसी दूसरे आलोचक में नहीं दिखती। और जिस युग में उन्होंने पेरिहूप्सुस की रचना की यदि उसे ध्यान में रखें तो वे सचमुच अद्वितीय हैं। यह हम संक्षेप में कुछ कुछ लोंगिनुस की पद्धति में ही उनके विचारों को उपस्थापित कर रहे जिससे सिद्धांतों के साथ उनकी कथन भंगी का भी थोड़ा आभास हो। एक दूसरी बात का भी संकेत अपेक्षित है। पेरिहूप्सुस के किसी एक अनुवाद पर निर्भर न रहकर हमने अनेक अनुवादों की सहायता ली है क्योंकि हमने पाया कि विभिन्न अनुवादों में परस्पर पर्याप्त भेद है, न केवल शब्दगत बल्कि अर्थगत और विन्यासगत भी। अध्यायानुसार पेरिहूप्सुस की विषय सूची इस प्रकार है। 1. अध्याय 1-7 भूमिका ग्रंथ का प्रयोजन उद्दात की परिभाषा कतिपय दोषों का विवेचन आदि। 2. अध्याय 8-15 उद्दात के 5 स्रोतों का निर्देश उनमें विचार की गरिमा तथा भाव की प्रबलता का निरूपण। 3. अध्याय 16-29 अलंकारों का निरूपण। 4. अध्याय 30-38 शब्द रूपक बिंब आदि का निरूपण। 5. अध्याय 39-40 रचना की भव्यता का निरूपण। 6. अध्याय 41-43 दृष्टिभेद में से उद्दात विरोधी कुछ अन्य दोषों की चर्चा। 7. अध्याय 44 उपसंहार यूनान के नैतिक साहित्यिक ह्रास के कारणों का संधान। पुस्तक की भूमिका है। प्रिय टेरिंटियानुस, चूंकि तुमने आग्रह किया है कि तुम्हारे संतोष के लिए मैं उद्दात विषयक अपने विचारों को लिख डालूं, अतः पहले हमें यह सोच लेना चाहिए कि मेरे विचारों में व्यापक सार्वजनिक मूल्य की कोई वस्तु है भी या नहीं। और मेरे मित्र, चूंकि अपनी प्रकृति और योग्यता से प्रेरित होकर तुमने मुझसे यह आग्रह किया है इसलिए मुझे आशा है कि तुम इसके विभिन्न विवरणों के विषय में अपने निष्पक्ष निर्णय से मुझे अवगत कराओगे। देवताओं से हमारी किन बातों में समानता है? इस प्रश्न के उत्तर में किसी ने ठीक ही कहा था, परोपकार और सत्य में। जैसा हम कह चुके हैं, पेरिहूप्सुस इसी तरह पत्र के रूप में है, अतः उसमें सर्वत्र उत्तम पुरुष का प्रयोग है। उद्दात की परिभाषा करते हुए लोंगिनुस कहते हैं, उद्दात अभिव्यंजना का अनिवर्चनीय अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट है। यही वह साधन है जिसकी सहायता से महान कवियों और इतिहासकारों ने ख्याति और अनिश्वर कीर्ति अर्जित की। उद्दात का प्रभाव श्रोताओं के अनुनयन में नहीं बल्कि सम्मोहन में दृष्टिगोचर होता है। जो केवल हमारा अनुनयन या मनोरंजन करता है उसकी अपेक्षा वह निश्चय ही अधिक श्रेष्ठ है जो हमें विस्मित कर सर्वदा तथा सर्वथा सम्मोहित कर लेता है। अनुनयन हमारे अधिकार की चीज है, अर्थात अनुनीत होना या ना होना हमारे हाथ में है, किंतु उद्दात तो प्रत्येक श्रोता को अप्रतिरोध शक्ति से प्रभावित कर अपने वश में कर लेता है। सृजनात्मक कौशल और वस्तु विन्यास पूरी रचना में अत्यंत वर्तमान रहते हैं और क्रमशः स्नेह स्नेह उभरते हैं, किंतु बिजली की कौंड की तरह सही समय पर उद्दात की एक कौंड पूरे विषय को उद्भासित कर देती है। निष्कर्ष की पहला, उद्दात अभिव्यंजना का प्रकर्ष और वैशिष्ट्य है। 2. उद्दात का कार्य अनुनयन नहीं सम्मोहन है। 3. उद्दात यदा कदा नहीं बल्कि सदा सबको और संपूर्णता सम्मोहित करता है। 4. उद्दात सर्वसर्जनात्मक या रचनात्मक कौशल से भिन्न तत्व है, उसका प्रभाव क्रमिक नहीं आकस्मिक होता है और उसके अलौकिक आलोक से कथ्य चमक उठता है। उद्दात सहज है या उत्पाद्य? उद्दात के स्वरूप निर्धारण के बाद लोंगिनुस दूसरा प्रश्न उठाते हैं, उद्दात सहज है या उत्पाद्य? कुछ लोगों का कहना है कि प्रतिभा सहज अर्थात जन्मजात धर्म है, उसे सीखा नहीं जा सकता। प्रकृति के अतिरिक्त और किसी चीज़ से वह उत्पन्न नहीं होती। उनका यह भी कहना है कि नैसर्गिक प्रतिभा से उत्पन्न कृतियाँ नियमों के कठोर बंधन और दबाव से निष्प्राण हो जाती। लोंगिनुस के अनुसार इस मत का विरोधी पक्ष भी निर्बल नहीं है। यह ठीक है कि प्राकृतिक प्रतिभा के महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु यह भी सही है कि प्रकृति नियमहीन या उच्छृंखल रूप में कुछ नहीं करती। यद्यपि सभी कार्यों का मूल कारण और सृजनात्मक आधार प्रकृति ही है, फिर भी किसी कार्य की मात्रा और काल का निर्धारण, कोई कार्य कितना और कब होगा अथवा उसके उपयोग के लिए स्पष्ट नियम का निर्माण किसी तंत्र या व्यवस्था के अंतर्गत आता है। कहने का अभिप्राय यह है कि उद्दात सहज होते हुए नियम निरपेक्ष नहीं है, उद्दात को एक खतरे में बचाना भी आवश्यक है। यदि उस पर ज्ञान का अंकुश न रहे तो वह अनर्थकारी सिद्ध हो सकता है। इसलिए उद्दात के लिए अंतः प्रेरणा की जितनी अपेक्षा है उतनी ही नियंत्रण की भी। लोंगिनुस उद्दात की उत्पत्ति के लिए केवल प्रतिभा को ही पर्याप्त नहीं मानते, उसके साथ ज्ञान व्युत्पत्ति को भी आवश्यक बताते हैं। तात्पर्य कि उद्दात नैसर्गिक ही नहीं उत्पाद्य भी है, प्रतिभा के अतिरिक्त ज्ञान और श्रम से ही उसकी सृष्टि संभव है। उद्दात के अवरोधक दोष, तीन दोष उद्दात के अवरोधक है। पहला शब्दाद अंबर, दूसरा बालिशता, तीसरा भावादम्बर। शब्दादम्बर को से बचाना बहुत कठिन है। बात यह है कि कुछ लेखक अशक्तता और शुष्कता से बचने के लिए प्रयास में शब्दादम्बर के शिकार हो जाते हैं, परंतु वे भूल जाते हैं कि शोथ शरीर की तरह रचना में भी अवांछनीय है। स्लथता का प्रभाव अभीष्ट के विपरीत होता है। कहावत है कि जलोदर के रोगी से बढ़कर और कुछ भी शुष्क नहीं होता, तो शब्दादम्बर के उद्दात के अतिक्रमण की इच्छा से उत्पन्न होता है, किंतु उद्दात का अतिक्रमण करने के बदले वह उसके प्रभाव को ही नष्ट कर देता है। बालिशता बचकानापन भव्यता का विलोम है, क्योंकि यह निर्बल और संकीर्ण बुद्धि से उत्पन्न होता है और लेखन संबंधी दोषों में सबसे है। बालिशता अप्रौढ़ता से उत्पन्न बचकाना विस्तार है, जो रचना को जड़ बना देता है। यह दोष तब आता है जब लेखक रचना को असाधारण या आकर्षक या भड़कदार बनाना चाहता है, पर हाथ लगती है केवल कृत्रिमता और प्रियदर्शन प्रियता। भावाडंबर का या मिथ्या भाव तीसरा दोष है। इसकी उत्पत्ति अष्टान अष्ट या निस्सार भाव से होती है, अर्थात जहाँ भाव की आवश्यकता नहीं है, या योग के जहाँ भाव के बदले संयम की आवश्यकता है, वहाँ जब लेखक भाव की अमर्यादित अभिव्यक्ति से प्रवृत्त होता है तो भावाडंबर आ जाता है। तात्पर्य की अष्टानष्ट अनपेक्षित और अनुचित भावातिरोक भावाडंबर है। शब्दाडंबर, बालिष्टा और भावाडंबर, ये तीन दोष उद्दात के बाधा के अवरोधक है। इन सभी दोषों का कारण एक ही है और वह है नवीनता का आग्रह, जिससे आज के लेखक ग्रस्त है। सच तो यह है कि हमारे दोष के स्रोत भी वे ही है जो गुणों की। यदि सुंदर शैली, भव्य कल्पना और प्रसन्न पदयोजना प्रभावी रचना के उपादान और सफलता के आधार है, तो विफलता के भी आधार ये ही है। औचित्य और मर्यादा के निर्वाह से जहाँ ये रचना को सफल बनाते हैं, वहाँ अनौचित्य या अमर्यादा से विफल भी। सच्चे उद्दात की पहचान, कहना न होगा कि उद्दात की सिद्धि तभी संभव है जब उसका स्वरूप स्पष्ट हो जाए, किंतु यह कार्य सरल नहीं है, क्योंकि साहित्य लोचन दीर्घ अनुभव की चूड़ांत उपलब्धि है। जजमेंट ऑफ लिटरेचर इज द क्रोविंग अचीवमेंट ऑफ लॉन्ग एक्सपीरियंस। धन सम्मान यश और प्रभुत्व की जो बाहरी तरक भड़क दिखाई देती है, उससे बुद्धिमान मनुष्य प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वह इनके भीतरी खोखलापन को अच्छी तरह जानता है। इसी प्रकार हमें यह भी देखना चाहिए कि कोई काव्य अलंकारों के अतिशय प्रयोग से तो भव्य नहीं लग रहा है, जिसे हटा देने पर वह अरमणीय लगने लगेगा और प्रशंसनीय के बदले निंदनीय बन जाएगा। वास्तविक उद्दात में कुछ ऐसी अंतर्निहित शक्ति होती है कि वह हमारी आत्मा को ऊपर उठा देता है और हमें ऐसे आनंद से भर देता है कि लगता है मानो हम जो सुन रहे हैं उसके श्रेष्ठा हम स्वयं हैं। यदि कोई बुद्धिमान और अधीत व्यक्ति किसी संदर्भ को अनेक बार सुनकर भी उसकी भव्यता का अनुमान नहीं करता, अथवा शब्दार्थ के अतिरिक्त चिंतन के योग्य उससे और कोई सामग्री नहीं पाता, बल्कि इसके विपरीत अवधान पूर्वक विवेचन करने पर उसका प्रभाव अधिकाधिक क्षीण होता जाता है, या एक बार सुनने तक भी टिकता है, तो इसका अर्थ है कि वह सच्चा उद्दात नहीं है। कोई रचना तभी महान होती है जब वह बार बार के परीक्षण से भी फीकी नहीं पड़ती, जब उसके प्रभाव को रोकना संभव नहीं होता और जब स्मृति में वह अटल और अमित रूप से अंकित हो जाती है। सामान्यतः उद्दात अपने पूरे सौंदर्य के साथ उन्हीं रचनाओं में रहता है जो सभी मनुष्यों को सदा आनंद देती है, जब विभिन्न व्यवसायों, जीवन पद्धतियों, आकांक्षाओं, रुचियों, उम्रों और भाषाओं के लोग किसी रचना के संदर्भ में सर्वथा सहमत हो, तो ऐसे परस्पर असमान व्यक्तियों का सर्वसम्मत निर्णय उस महनीय वस्तु में हमारी आस्था को दृढ़ और अविचल बनाता है। उद्दात के पांच स्रोत, लोंगिनुस उद्दात के पांच स्रोत मानते हैं। पहला, महान विचारों की उद्भावना की क्षमता। दूसरा, प्रबल तथा अंतः प्रेरित भाव। तीसरा, अलंकारों, विचार अलंकार और शब्दालंकार का समुचित प्रयोग। चौथा, भव्य शब्द योजना, इसमें शब्द चयन, बिंब विधान तथा शैलीगत परिष्कार अंतर्भूत है। पांचवा, रचना की गरिमा और उत्कर्ष का समुचित प्रभाव। इनमें प्रथम और द्वितीय बहुत कुछ जन्मजात है और शीर्ष शेष तीनों कला से उत्पन्न होते हैं। अर्थात प्रथम दोनों प्रतिभा की देन और शेष कला व्युत्पत्ति अभ्यास की। लोंगिनुस की मान्यता है कि सभी भाव उद्दात के उपयुक्त नहीं होते। करुणा, भय और दुख जैसे भाव इतने क्षुद्र हैं कि इनमें उद्दात की कल्पना भी नहीं हो सकती। दूसरी बात ध्यान में रखने की यह है कि अनेकत्र भाव के बिना भी उद्दात की स्थिति पाई जाती है, अर्थात उद्दात के लिए भाव का होना जरूरी नहीं है। कहने की आवश्यकता नहीं कि पहली मान्यता का अरस्तु से विरोध है। अरस्तु के अनुसार करुणा और भय दुखांतक के प्राण है। दुखांतक के प्रभाव का सारा दारामदार करुणा और भय पर ही निर्भर है। इसके विपरीत लोंगिनुस इन दोनों भावों को क्षुद्र कहते हैं, उद्दात की सीमा में इन्हें बहिष्कृत कर देते हैं। ऐसा करते समय निश्चय ही उनके मन में अरस्तु प्रचंड रूप से वर्तमान है, अन्यथा इतने जोरदार ढंग से करुणा और भय का प्रत्याख्यान अपेक्षित नहीं था। दूसरी मान्यता में स्ववचन विरोध है। एक ओर तो लोंगिनुस उद्दात के 5 स्रोतों में भाव को प्रधान द्वितीय स्थान देते हैं, जो उसे जन्मजात मानते हैं। यही नहीं, केलिकियुस के उस उद्दात विषयक निरूपण में उनकी अरुचि और संतोष का एक कारण यह भी है कि केकिलियुस के भाव की उपेक्षा कर दी है। लोंगिनुस के उद्दात निरूपण का एक सबल कारण भाव की प्रतिष्ठा भी है। भाव को इतना महत्व देकर यह कहना है कि भाव के बिना भी उद्दात की निष्पत्ति होती है, व्यातो व्याघात हो जाता है। उनके उदाहरण से यह भी स्पष्ट है कि वे भाव को उद्दात का अनिवार्य अंग नहीं मानते। उत्पत्ति ग्रंथ द बुक ऑफ जेनेसिस के त्रित उद्दात का उदाहरण भावहीन है। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। इसमें विस्मय मिश्रित भव्यता तो है पर भाव का स्पर्श भी नहीं है। लोंगिनुस ने वक्ताओं के भाषण का हवाला देते हुए कहा कि उनमें भव्यता और गरिमा तो होती है किंतु भाव सदा नहीं होता। इससे सिद्ध है कि भावुक वक्ता सबसे कम प्रभावी होते और जो उत्तम वक्ता है वे भावुकता से बचना चाहते। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि केकिलियुस के तरह यह मान ले कि उद्दात से भाव का कोई संबंध ही नहीं है। लोंगिनुस अपना अभिप्राय प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, मैं विश्वासपूर्वक कहना चाहता हूँ कि उचित स्थल पर भव्य भाव के समावेश से बढ़कर उद्दात की सिद्धि का और कोई साधन नहीं है। वह भाव वक्ता के शब्दों में एक प्रकार का रमणीय उन्माद भर देता है और उसे दिव्य अंतः प्रेरणा से समुच्छ्वसित कर देता है। विचार की महत्ता। उद्दात के स्रोतों में प्रथम स्थान विचार की महत्ता का है। लोंगिनुस शब्द भेद से उसे ही आत्मा की भव्यता नोबिलिटी ऑफ सॉइल भी कहते सॉल भी कहते हैं। आपात या स्खलन ऐसा प्रतीत होता है पर स्खलन है नहीं, कारण कि लोंगिनुस के अनुसार विचार की महत्ता का जन्म आत्मा की भव्यता से ही होता है। आगे उन्होंने कहा है, उद्दात महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। वाणी को कौन कहे, कभी कभी तो महान आत्मा का मौन भी इतना मुखर होता है कि वह उद्दात में परिणत हो जाता है। इसलिए यह बता देना अत्यंत आवश्यक है कि जो मनुष्य वस्तुतः वाग्मी है उसकी आत्मा कभी भी क्षुद्र या अधम नहीं हो सकती। जिनके विचार और उद्देश्य निर्बल और दासोचित है वे कोई असाधारण उद्भावना नहीं कर सकते। वाणी की महत्ता के लिए विचारों की महत्ता आवश्यक है। उच्चाशय मनुष्यों की अभिव्यंजनाएं निसर्गतः भव्य होती है। नवम अध्याय में होमर के दो महाकाव्यों इलियड और ओडिसी की तुलना करते हुए लोंगिनुस कहते हैं, इलियड होमर की तरुणाई की रचना है क्योंकि उसमें गति और संघर्ष का प्राचुर्य है। इसके विपरीत ओडिसी का बहुलांश आख्यात्मक है जो बुढ़ापे की देन है। ओडिसी के होमर की उपमा डूबते हुए सूर्य से दी जा सकती है जिसमें भव्यता तो रहती है पर तीव्रता नहीं। ओडिसी के उद्दात संदर्भों में वह समरस भास्वरता नहीं जो कभी हीन प्रभ न हो, न उसमें भावों का प्रवाह प्राचुर्य है और न यथार्थ जीवन से गृहित बिंबों की मनोरम वाग्मितापूर्ण शैली ही। ऐसा लगता है कि मानो महासागर सिमट कर अपनी सीमा में शांत पड़ा हो। जहाँ हम होमर की महत्ता का उतार देखते हैं क्योंकि हम पाते हैं कि वे काल्पनिक और अविश्वसनीय क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं। ऐसा करते समय मैं ओडिसी के तूफानों को नहीं भूला हूँ, मैं केवल बुढ़ापे की बात कर रहा हूँ, पर यह बुढ़ापा भी होमर का है। मैंने यह विषयांतर यह दिखाने के लिए किया है कि हिरास के समय महान प्रतिभा भी कभी कभी सारहीन लेखन से नहीं बच पाती। हमने यह उदाहरण यह दिखाने के लिए दिया है कि लोंगिनुस की आलोचनात्मक पकड़ कितनी जबरदस्त है और कथन भंगी प्रांजल होते हुए भी कितनी ऊर्जस्वल है। विषय का चयन और संगठन। अब हमें यह देखना है कि ऐसी कोई दूसरी वस्तु भी है क्या जो शैली को उद्दात बना सके। उद्दात का एक स्रोत है असाधारण परिस्थितियों के निर्भ्रांत चयन और उसके परस्पर अंतर्ग्रंथन की योग्यता जिससे उनमें एकीभूत संघता सिंगल ऑर्गेनिज्म की प्रतीत हो। कई कोई लेखक विचारों के चयन से अपने पाठकों को आकृष्ट करता है और कोई विचारों के समन्वित प्रभाव से। उदाहरणतः साफो 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व वास्तविक जीवन के भाव चक्र से केवल प्रेम के सहचर भावों का चयन करती है, किंतु उसकी विशेषता उन भावों के चयन से कहीं अधिक उसके कौशल में है जिसके द्वारा वह उन भावों को घुला मिलाकर एक अभिनव साथ ही तीव्र और उत्कट रूप में अभिव्यक्त करती है। विस्तारण एम्प्लीफिकेशन। विस्तारण का उद्दात्त में क्या योगदान है? इस बात पर विचार करते हुए लोंगिनुस कहते हैं, भाषण शास्त्र के अन्य लेखकों से उनका मत भिन्न है। अन्य लेखकों का कहना है कि विस्तारण भाषा की वह विशेषता है जिससे विषय में भव्यता आती है। लोंगिनुस की आपत्ति है कि यह लक्षण तो उद्दात्त पर भी घटित होता है, भावात्मक और आलंकारिक शैलियों पर भी घटित होता है, क्योंकि इसमें भी भाषा के में कुछ न कुछ भव्यता आती है। लोंगिनुस के अनुसार उद्दात्त की स्थिति उन्नयन में है और विस्तारण की मात्रा में। इस प्रकार उद्दात प्रायः एक विचार में निहित रहता है, जबकि विस्तारण सदा मात्रा का सहवर्ती होता है और उसमें अल्पाधिक निरर्थकता भी रहती है। तात्पर्य कि विस्तारण विषय से संबंध अनेक छोटे मोटे स्थलों और आकस्मिक प्रकरणों का संकलन है जो तर्क पर सबल बनाता है। इसके बाद लोंगिनुस डेमोस्थनेस इतिहास प्रसिद्ध यूनानी वक्ता और सिसेरो प्रख्यात रोमी वक्ता की तुलना करते हुए कहते हैं, डेमोस्थनेस का उद्दात पुरुष है जो सिसेरो का विस्तृत। डेमोस्थनेस अपनी शक्ति गति वेग और तीव्रता से सामने जो कुछ भी पड़ता है उसे या तो जला देते हैं या उड़ा देते हैं, इसलिए हम उनकी तुलना वज्रपात या वात्याचक्र से करते हैं। सिसेरो प्रसरणशील ज्वालमाल के समान है जो पास और दूर की प्रत्येक वस्तु को अपनी लपट में भस्म कर देती है। उसमें अस्थिर और व्यापक ज्वाला है जो इधर उधर जहाँ चाहे मुड़कर अपना ईंधन प्राप्त करती है। डेमोस्थनेस जब श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करना चाहते हैं तो उनका ओज तीव्र और उद्दाम भावों में प्रकट होता है। सिसेरो का प्रसार वहाँ देखने को मिलता है जहाँ वे अपने वाग्मिता के प्रवाह में श्रोताओं को बहा ले जाना चाहते हैं। उद्दात और अनुकरण। उद्दात के ऊपर निर्दिष्ट साधनों के अतिरिक्त एक और साधन है, वे अपने पूर्ववर्ती महान कवियों और लेखकों का अनुकरण तथा उनसे स्पर्धा। हमें इस लक्ष्य को अपने मन में दृढ़तापूर्वक स्थिर करना चाहिए कि क्योंकि अनेक लेखक दूसरों की उपलब्धि से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। प्राचीन प्रतिभाओं से एक प्रकार का ज्योति प्रवाह निकलकर स्पर्धालुओं की आत्मा में प्रवेश कर जाता है और जिनमें अंतः प्रेरणा का अभाव सा रहता है उनमें भी पूर्वजों की भव्यता की दिव्य शक्ति भर उन्हें आविष्ट बना देती है। यह भाव पढ़हन नहीं है बल्कि सुंदर चित्रों मूर्तियों या कलाकृतियों का प्रभाव ग्रहण है। यदि प्लेटो ने प्राणपन से होमर से स्पर्धा न की होती तो उनके दार्शनिक सिद्धांतों में विकास की जो मनोहरी छटा दिखती है वह न दिखती और न उसका विषय काव्यात्मक होता, न अभिव्यंजना कौशल कलात्मक। कीर्ति और विजय की अभिलाषा से आरब्ध संघर्ष की आभा पूर्वजों द्वारा पराभव के बाद भी म्लान नहीं होती और न उनसे लेखक की गौरव में आँच आती है। कुछ व्यावहारिक निर्देश। किसी विषय का वर्णन करते समय यदि हमें लगे कि इसमें विचार और अभिव्यंजना की गरिमा और औदार्य अपेक्षित है तो मन ही मन यह सोचना चाहिए कि क होमर ने इसे कैसे कहा होता, प्लेटो डेमोस्थनेस अथवा थुकीडेडस ने इसमें गरिमा का सन्निवेश किया कैसे होता। हमारी प्रतिस्पर्धा की भावना इन महापुरुषों की कल्पना में साकार कर देगी और हमारे उत्साह को बढ़ाते हुए तथा मार्ग को आलोकित करते हुए यह हमें पूर्णता के अभिषिक्त आदर्श तक पहुँचा देंगे। ख इससे भी अच्छा यह होगा कि हम अपने आप से पूछें कि होमर या डेमोस्थनेस यदि यहाँ उपस्थित होते तो हमारी उक्ति को सुनकर वे क्या कहते या हमारी उक्ति से वे कितना प्रभावित होते। सचमुच यह परीक्षा बड़ी कठिन होगी यदि हम अपनी उद्दात के मूल्यांकन के लिए ऐसे अतिमानव निर्णायक मंडल की कल्पना करें। यदि इसके साथ हम यह प्रश्न भी जोड़ लें तो और प्रेरणा मिलेगी, ऐसे लेखन को भावी युग किस रूप में ग्रहण करेंगे। अगर कोई ऐसी बात कहने मात्र से घबराता है कि वह उसके जीवन काल के बाद भी जीवित रहे तो उसके विचार निश्चय ही अपूर्ण और धुंधले होंगे, क्योंकि उसमें उस प्रौढ़ता की कमी होगी जो रचना को अक्षय कीर्ति प्रदान करती है। बिंब और कल्पना। बहुत दूर तक गरिमा भव्यता और अनुनयन शक्ति के उत्पत्ति बिंबों से होती है, इन्हें ही कुछ लोग मानस चित्र भी कहते हैं। साधारणतः बिंब शब्द का प्रयोग किसी ऐसे विचार के लिए होता है जो किसी भी रूप में उत्पन्न होकर वाणी को स्फुरित करता है। इसका प्रयोग ऐसे संदर्भों के लिए भी होने लगा है जिनमें भाव की प्रबल प्रेरणा से हमें वर्णनीय वस्तु प्रत्यक्षवत प्रतीत होती है और श्रोताओं को भी हम उसकी प्रत्यक्षवत प्रतीति कराते हैं। बिंब विधान का जो प्रयोजन कवि के लिए है वही वक्ता के लिए नहीं। बिंब की सहायता से कवि मुख्यतः भाव को उद्दीप्त करता है और वक्ता वर्णन को सजीव बनाता है। हालांकि किसी न किसी भाव का उद्दीपन दोनों का लक्ष्य होता है। यहाँ एस्क्लूस सोफोक्लेस और एवरीपिडेस जैसे दुखांतकारों से उदाहरण दे देकर लोंगिनुस अपने कथन का समर्थन करते हैं और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि कवियों के वर्णन में इतनी रोमानी अतिरंजता रहती है कि बहुत बार वह विश्वसनीयता की सीमा लांघ जाती है, जबकि वक्ता का बिंब विधान सदा वास्तविक तथा सत्य होता है। बात यह है कि भाषा की संरचना जब भी काव्यात्मक और कल्पनात्मक होती है तो वह असामान्यताओं में भटक जाती है। तथा ऐसे भटकाव अप्राकृतिक और विचित्र लगने लगते हैं। प्रश्न की तब भाषा में बिंब की आवश्यकता क्या है? उत्तर की और चीज़ों के साथ उसमें भाषा के भाव और ऊर्जा का संचार होता है और तर्क से समन्वित हो जाने पर वह श्रोताओं का केवल अनुनयन ही नहीं करता बल्कि उन्हें सम्मोहित भी कर लेता है। निष्कर्ष की विचार का औदात्य सरास्यता अनुकरण और बिंब से प्रसूत होता है। अलंकार पेरिहुप्सुस के 44वें अध्यायों में 14 अध्याय लगभग एक तिहाई अलंकार पर है। प्रश्न विपर्य सार्य पर्यायोक्त अतिशयोक्ति रूपक आदि अलंकारों के उदाहरण देकर लोंगिनुस यह दिखाना चाहा है कि उद्दात की निष्पत्ति में अलंकारों का क्या योगदान है। इस प्रसंग में अलंकार संबंधी उनके सामान्य मंतव्य अधिक उपादेय हैं। क अलंकारों का समुचित प्रयोग औदात्य के प्रभाव में चार चांद लगा देता है। ख अंतर्निहित चारुत्व के कारण अलंकार उद्दात को पुष्ट करते हैं और स्वयं उनसे पुष्ट होते हैं। ग अलंकारों में अतिशय प्रयोग से दुराव या मिथ्यात्व का संदेह होने लगता है कि लेखक किसी त्रुटि के अलंकारों को आवरण में छिपाना तो नहीं चाह रहा है। अतः अलंकार पूर्णतः प्रभावी तब होते हैं जब यह पता भी न चले कि कोई अलंकार प्रयुक्त हुआ है। घ अलंकारों के अवांछित प्रयोग से उत्पन्न दुष्प्रभाव को प्रतिसंतुलित काउंटर बैलेंस करने का उपाय है कि उद्दात और भाव्य की अभिव्यंजना को सबल बनाया जाए। इनके प्रकाश में अलंकारों की कृत्रिम आभा ऐसे ही छिप जाती है जैसे सूर्य के प्रकाश में छोटे निस्तेज प्रकाश। उद्दात विचार और मार्मिक भाव हमारे हृदय के अधिक समीप होते हैं और अलंकारों की अपेक्षा जल्दी ध्यान आकृष्ट करते हैं। भाव भी वे ही चमत्कारी होते हैं जो पूर्व विचारित प्रतीत न होकर परिस्थिति प्रसूत प्रतीत होते हैं। ऋण एक अलंकार के बदले अनेक अलंकारों का मिश्रण संकर और संसृष्टि बहुत प्रभावी होता है। कला की पूर्णति उनमें है। यह प्राकृतिक जान पड़े और प्रकृति की सुंदरता इसमें है कि वह कला को छिपाए रखे। परियोजना उपयुक्त एवं मनोरम पदों का चयन श्रोताओं को कितना द्रवित या मोहित करता है यह बताने की आवश्यकता नहीं। ऐसे ही पदों का चयन सभी वक्ताओं और लेखकों का चरम लक्ष्य होता है क्योंकि इसी से शैली की गरिमा रमणीयता स्निग्धता बल शक्ति या अन्य भी अपेक्षित गुण आते हैं। सुप्रयुक्त शब्द विचारों के प्रकाशक होते हैं और परस्मरण रखना चाहिए कि भव्य शैली का प्रयोग सदा उपयुक्त नहीं होता। कुछ तुच्छ वस्तुओं की अभिव्यक्ति के लिए विशिष्ट और भव्य शब्दावली वैसे ही अनुपयुक्त होती है जैसे किसी छोटे बच्चे के मुंह पर रखा विशाल मुखौटा। ललित शब्दावली की तुलना में कभी कभी परिचित या सहज शब्दावली अधिक अभिव्यंजक होती है क्योंकि दैनिक जीवन से गृहित होने के कारण वह तुरंत पहचान में आ जाती है। जानी पहचानी चीज अधिक विश्वसनीय होती है। वार्ड सवर्ट ने इस मंतव्य को पल्लवित किया है। रूपक के संबंध में अरस्तु का कहना था कि दो या अधिक से अधिक तीन रूपकों का प्रयोग करना चाहिए। लोंगिनुस अरस्तु से अपनी असहमति दिखाते हुए कहते हैं कि रूपकों के प्रयोग में संख्या का बंधन अनावश्यक है। प्रकरण की मांग के अनुसार रूपकों की संख्या कुछ भी हो सकती है। जब भाव निर्जर वेग की तरह फूटते हैं तो अपने साथ रूपकों के समूह को बहा ले जाते हैं। हिंदी में तुलसीदास के रूपक इसके प्रमाण है। बात की बात में रूपकों का अंबार लग जाता है और कौन किससे अधिक आबदार है यह कहना कठिन है। आनंद वर्धन का भी कहना है कि रसाभिनिवेशी कवि के सम्मुख अलंकार अहमहमिका के साथ यह कहते हुए कि पहले मेरा प्रयोग कीजिए पहले मेरा प्रयोग कीजिए खड़े हो जाते हैं। सदोष उद्दातत्ता और अदोष मध्यमता। प्रश्न है कि सदोष उद्दातत्ता और अदोष मध्यमता में कौन श्रेष्ठ है। इसी प्रश्न का एक दूसरा रूप भी है कि गुणों की संख्या अधिक वांछनीय है या उत्कर्षाधिक्य। लोंगिनुस की मान्यता है कि उत्तम प्रतिभा सर्वथा दोष रहित नहीं होती क्योंकि पूर्ण शुद्धता का प्रयास तुष्टता में परिणत हो जाता है। परम धनाढ्य व्यक्ति की संपत्ति की तरह भव्य शैली में कुछ न कुछ उपेक्षित हो ही जाता है। जिस प्रकार बहुत वैभवशाली एक एक वस्तु की खोज खबर नहीं रख सकता उसी प्रकार बहुत प्रतिभाशाली भी एक एक दोष के प्रति सतर्क नहीं रह सकता। संभव है कि सामान्य बुद्धि का व्यक्ति जो ऊंचे चढ़ने का खतरा नहीं उठाना चाहता दोषों से मुक्त रह जाए पर महान प्रतिभाशाली अपनी क्षमताओं के कारण स्खलन से नहीं बच पाता। एक प्रवृत्ति यह भी देखी जाती है कि मानवीय प्रयासों के श्लाघ्य पक्षों की ओर लोगों का ध्यान कम रह जाता है। दोषों की याद तो अमित होती है किंतु गुणों की याद तुरंत मिट जाती है। होमर या अन्य चोटी के लेखकों में भी दोष पाए जाते हैं और वे प्रीतिकर होते नहीं परंतु यह नहीं सही नहीं है कि इनके दोष ज्ञानाकृत नहीं है बल्कि अनुवधान के कारण यदा कदा घुस आते हैं। यद्यपि उनकी रचनाओं में गुणोत्कर्ष समान भाव से सर्वत्र नहीं दिखता तथापि उनका उच्चासन सदा सुरक्षित है क्योंकि वे महान हैं। कुछ कवियों के छंदों में व्यवस्था की कमी खटकती है पर उनमें दिव्य प्रेरणा की ऐसी तरंगें उठती है कि उन्हें नियंत्रित करना कठिन होता है। दोषा भाव केवल निंदा से बचाता है किंतु उद्दात बर्बस श्लाघा अर्जित करता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि महान लेखकों के सारे दोष उद्दाट की एक कौंट में छिप जाते हैं। यदि होमर, डेमोस्टेनेस, प्लेटो या अन्य शीर्ष लेखकों के समस्त दोषों को संकलित किया जाए तो वे भी इसके प्रत्येक पृष्ठ पर जो विजय रेखाएं खींची है उनकी तुलना में नगण्य से प्रतीत होंगे। यही कारण है कि सभी युगों में उन्हें इस महिमा से मंडित किया है जो तब तक नष्ट नहीं होते जब तक कि नदियां प्रवाहित होती रहेंगी। अतिशयोक्ति के प्रयोग में बड़ी सतर्कता अपेक्षित है। लेखक को अतिशयोक्ति की मर्यादा का ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा उसका अतिक्रमण होने पर प्रभाव जाता रहता है और दूर की कौड़ी लाने के प्रयास में वह सपाट हो जाती है। रचना की गरिमा। उद्दात का पंचम स्रोत है रचना की गरिमा, जिसका लक्षण है उचित क्रम में शब्दों का विन्यास। इसका प्रयोग लोंगिनुस नहीं करते क्योंकि इस पर दो स्वतंत्र ग्रंथ लिख चुके हैं। यहाँ इतना ही कहना काफी है कि ध्वनियों का सामंजस्यपूर्ण विन्यास केवल अनुयनयन और प्रसादन का ही नैसर्गिक माध्यम नहीं है बल्कि गरिमा और भावना का भी अद्भुत साधन है। क्या वंशी का स्वर श्रोताओं में भाव को उद्दीप्त कर उन्हें दिव्योन्माद से नहीं भर देता? उससे भी लयात्मक गति उत्पन्न होती है पर श्रोताओं को अपने माधुरी से तन्मय कर देती है और यदि वे संगीत प्रेमी न हो तो भी उनकी गति को इस लय के अनुकूल बना लेती है। उद्दात के निर्माण में घटक तत्वों के समुचित संयोजन की वही भूमिका है जो शरीर के संदर्भ में अवयवों की। भारतीय काव्यशास्त्र में भी पद विन्यास की उपमा अंग विन्यास से दी गई है। एक दूसरे से अलग होकर कोई भी अंग काम नहीं कर सकता, परस्पर संयोजित होकर भी सभी अंग पूर्णता प्राप्त करते हैं। इस तरह उद्दात के तत्व भी एक दूसरे से अलग होकर उसे छिन्न भिन्न कर देते, किंतु वे भी जब अंग विभाग संबंध से परस्पर मिलकर एक हो जाते और उनमें सामंजस्य स्थापित हो जाता है तो उनमें जैव पूर्णता आ जाती है जिसमें औदात्य की या भव्यता की क्षमता नहीं है और जो बहुधा विशिष्ट साहचर्यों से रहित सामान्य और लोकप्रिय भाव शब्दों का ही प्रयोग करते। वे भी उचित क्रम में उन शब्दों का विन्यास तथा संयोजन कर समान सम्मान और गौरव प्राप्त कर लेते हैं और उनकी रचना में गरिमा की छटा भी आ जाती है। कहने का अभिप्राय यह है कि प्रतिभा के अभाव में भी अध्ययन और अभ्यास से उद्दात की उपलब्धि संभव है। दंडी। 7वीं शताब्दी ईस्वी में भी प्रतिभा के अभाव में व्युत्पत्ति और अभ्यास से षटकाव्य का निर्माण संभव बताते हैं। खंडित अथवा उच्चा वच लय से उद्दात आहत होता है, इसी प्रकार लय का अतिरेक भी उद्दात का बोधक बाधक है। उससे शब्दों का भाव संप्रेषित नहीं होता, केवल लय की गूंज संप्रेषित होती है। वे अनुच्छेद भी भव्यता से शून्य होते जो बहुत संक्षिप्त और छोटे छोटे वाक्य खंडों या शब्दों में विभक्त होते हैं। जब तक दुर्निवार आवश्यकता न पड़े तब तक कुत्सित और जगुत्सिप्त शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शब्द ऐसे हो जो विषय की गरिमा के अनुरूप हो। वाग्मिता का ह्रास। पेरिहुप्सुस के अंतिम 44वें अध्याय में लोंगिनुस ने यूनान के अध्यापतन पर क्षोभ व्यक्त किया है। अध्यापतन के कारणों में दो का वे बहुत क्षोभ और आक्रोश से उल्लेख करते हैं, वे हैं धन लोलुपता और विलासप्रियता। इन्हीं दोनों ने यूनान को पंख के गर्त में निमग्न कर रखा है जिससे उसका सारा सारत्व सांस्कृतिक और कलात्मक उत्कर्ष समाप्त हो गया है और लोकेतर प्रतिभाओं का अभाव सा हो गया है। यूनान के संबंध में लोंगिनुस ने जो कहा है वह आज के भारत पर कुछ कम चरितार्थ है। स्पष्टता के लिए लोंगिनुस के विचारों का एकत्र समाहार और सिंहावलोकन कर लेना अच्छा होगा। पहला, उद्दात अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट्य है, उसका कार्य सम्मोहन है और प्रभाव आकस्मिक होता है। दूसरा, शब्दाम्बर, भावाडम्बर और बालिष्ठा उद्दात के विद्यातक है। तीसरा, उद्दात के निष्पादक 5 तत्व है, विचार की महत्ता, भाव की तीव्रता, अलंकार का समुचित प्रयोग, पद योजन की भव्यता और रचना की गरिमा। क, विचार की महत्ता। उद्दात के तत्वों में विचार की महत्ता का सबसे प्रमुख स्थान है। विचार की महत्ता तब तक संभव नहीं है जब तक कि वक्ता या लेखक की आत्मा भी महान न हो, कारण कि औदात्य महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। महान आत्मा का अर्थ है विचार के चरित्र, आचार व्यवहार सभी महान हो। महान आदर्शों का अनुकरण भी विचार की महत्ता को समृद्ध करता है, इसलिए प्राचीन श्रेष्ठ रचनाओं का ज्ञान आवश्यक है। उत्तम आदर्शों के अनुकरण से अनुकर्ता का पथ प्रशस्त तथा आलोकित होता है और उसकी आत्मा का उन्नयन होता है। अनुकरण बाहरी नकल मात्र नहीं है बल्कि पूर्वजों की दिव्य भव्यता को अपने आहित कर लेने का प्रयास है। प्राचीन प्रतिभाओं के चैतन्य से आविष्ट रचनाकार की अंतःप्रेरणा जाग उठती है। विचारों में सर्गजता का आधान कल्पना से होता है। विचार ऊंचे हो ही किंतु नवोन्मेषशाली प्रतिभा कल्पना न हो तो सर्जन संभव नहीं होता। सर्जकता कल्पना से ही सक्रिय होती है। इन सब के साथ असाधारण स्थितियों, मार्मिक स्थलों की पहचान और उनका समीचीन समूहन भी आवश्यक है, क्योंकि क्षुद्र स्थितियों को जोड़कर उद्दात का प्रसाद नहीं खड़ा किया जा सकता। ख, भाव की तीव्रता। उद्दात के दूसरे तत्व भाव की तीव्रता के संबंध में लॉन्गिनुस के मंतव्य उपलब्ध ही नहीं है, क्योंकि उनके ग्रंथ के खंडित अंशों में यह भी एक है। ग्रंथ के अंत में उनका संकेत है कि भाव पर वे एक स्वतंत्र ग्रंथ लिखेंगे, पर वह भी अप्राप्त है। पेरिहुप्सुस के विभिन्न प्रसंगों में लॉन्गिनुस के कथनों से ज्ञात होता है कि उद्दात के लिए वे भाव की तीव्रता या प्रबलता को आवश्यक मानते हैं। भाव की तीव्रता के कारण वे होमर के इलियड को ओडिसी से श्रेष्ठ बताते हैं। महान विचारों के समान भव्य भावों का संबंध महान आत्माओं से है। भाव की भव्यता में भाव की सत्यता भी अंतर्भूत है, इसलिए लॉन्गिनुस भाव के अतिरेक से बचने की राय देते हैं, जिससे भाव अविश्वसनीय और सत्य न हो जाए। किसी भी वस्तु के अतिरेक या अतिरंजना से अविश्वसनीयता उत्पन्न होती है और अविश्वसनीयता आह्लाद में बाधक बनती है। अतः आवश्यक है कि भाव की मात्रा संतुलित हो। ध्यान में रखने की दूसरी चीज यह है कि इसका प्रयोग उचित स्थल पर होना चाहिए। स्थानस्थ भाव आह्लादक के बदले उद्वेचक हो जाता है। तीसरी चीज यह है कि लॉन्गिनुस उद्दात को क्षुद्र भावों से मुक्त रखने के आग्रही हैं। करुणा भय आदि उनकी दृष्टि में क्षुद्र भाव हैं, इनसे उद्दात की निष्पत्ति नहीं हो सकती। इस विषय में अरस्तु ने लॉन्गिनुस का मौलिक मतभेद है। अरस्तु के अनुसार करुणा और भय दुखांतक के अनिवार्य है, उनका विरेचन सिद्धांत पर इन्हीं पर आश्रित है, किंतु लॉन्गिनुस की दृष्टि में ये दोनों क्षुद्र भाव हैं और उद्दात के विरोधी हैं। गौ अलंकार का समुचित प्रयोग। उद्दात के लिए जो कलात्मक साधन अपेक्षित है, उनमें अलंकार का प्रमुख स्थान है। यह इससे भी प्रमाणित होता है कि लॉन्गिनुस ने विचार और भाव के बाद तीसरे स्थान पर अलंकार को ही रखा है। जैसा हम पहले भी देख चुके हैं कि लॉन्गिनुस का अलंकार निरूपण मुख्यतः भाषण कला की दृष्टि से, जिसमें अलंकारों की सहायता से आनंद विस्मय औत्सुक्य आदि को जगाते हुए श्रोता की सहमति प्राप्त करने का प्रयास किया गया है, पर उनकी उपादेयता लेखन में भी कम नहीं है। भारत में तो अलंकार निरूपण लेखन काव्य के प्रसंग में ही हुआ है। लॉन्गिनुस के अनुसार अलंकार के दो वर्ग हैं, विचारालंकार तथा शब्दालंकार। विचारालंकार से तात्पर्य अर्थालंकार से है। अलंकारों के प्रयोग में सबसे पहले यह याद रखना चाहिए कि वे साधन है, साध्य नहीं। साध्य उद्दात है, अलंकार उसके प्रभाव को तीव्र बनाने के लिए साधन मात्र है। अलंकार को साध्य मान लेने पर कथ्य बोझिल हो जाता है और उसका सौंदर्य दब जाता है। बहुत बार असमर्थ वक्ता या लेखक अलंकार की चमक टमक में अपना भाव्य दरिद्रता छिपाने का प्रयास करता है। वस्तुतः अलंकार का प्रयोग सार्थक तब होता है जब यह पता ही न चले कि अलंकार है भी, अर्थात कथ्य से अलग उसकी प्रतीति नहीं होनी चाहिए। एक बात और, अलंकारों के अतिशय प्रयोग से बचना चाहिए। उनका प्रयोग तभी करना उचित है जब अभिव्यक्ति की मनोहारिता में उसका योगदान अपरिहार्य प्रतीत हो। तात्पर्य की उद्दात के लिए अलंकार अपेक्षित तो है, पर स्वाभाविक तथा मर्यादित रूप में ही। ध्वनि प्रतिष्ठापक आचार्य आनंदवर्धन के अलंकार विषयक मंतव्य लॉन्गिनुस से बहुत मिलते हैं। उनका भी कहना है कि अलंकार का प्रयोग अंग साधन रूप में ही होना चाहिए, अंगी साध्य रूप में नहीं। दूसरी चीज यह है कि अलंकार अपृथक यत्न निर्वैक्य होना चाहिए, अर्थात यह न लगे कि अलंकार के लिए कोई पृथक प्रयत्न हुआ है या उक्ति में वह अलग से जोड़ा हुआ है। घ पद योजना की भव्यता। औदात्य के लिए उपयुक्त और मनोहारी पद अपेक्षित है, क्योंकि ऐसे ही पद श्रोताओं को आकृष्ट और आह्लादित कर सकते हैं और इन्हें से शैली में गरिमा, रमणीयता, स्निग्धता, बलवत्ता, शक्ति या अन्य भी अपेक्षित गुण आते हैं। ललित पदावली की तुलना में बहुधा परिचित पदावली अधिक प्रभावशाली होती है, क्योंकि जीवन से सीधा संबंध होने के कारण उसमें सजीवता रहती है। शैली कोई स्थिर तथा निश्चित तत्व नहीं है, विचार एवं भाव के आरोह अवरोह के साथ शैली में भी आरोह अवरोह आवश्यक है। शैली की एकरसता प्रयुक्ता की दुर्बलता और असमर्थता की द्योतक है, इसलिए पद चयन प्रकरण के अनुकूल होना चाहिए। यदि प्रकरण हल्का हो तो उसके लिए वैसे ही पद क्रम में लाने चाहिए, और यदि गुरु गंभीर हो तो तदनुरूप पद ही प्रयुक्त होने चाहिए। अष्टु की तरह रूपक की संख्या का बंधन लॉन्गिनुस को अमान्य है। प्रसंग की अपेक्षा के अनुसार रूपकों की संख्या कितनी भी हो सकती है। लॉन्गिनुस की व्याख्याताओं ने इसे उसकी स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति का प्रमाण कहा है, जिसमें नियमानुवर्तिता का विरोध परिलक्षित होता है। हमने देखा है कि लॉन्गिनुस की दृष्टि में नियम से अधिक महत्व रुचि का है। रौ रचना की गरिमा। इस शीर्षक के अंतर्गत लॉन्गिनुस पदों के सम्यक क्रम विन्यास पर बल देते हैं। चतुर्थ शीर्षकों में पदों के चयन पर बल देते हैं, इसमें उनके समीचीन विन्यास पर। पद अच्छे से अच्छे हो पर उनका विन्यास ठीक न हुआ हो तो उससे सौंदर्य व्यक्त नहीं हो सकता, इसलिए पद चयन के कम महत्व पद विन्यास का नहीं है। किंतु पंचम शीर्षक में केवल पद विन्यास के कौशल का ही निरूपण नहीं है, इसमें उद्दात के निष्पादक शेष चार तत्व विचार भाव अलंकार और पद चयन के समंजस संतुलित अंतर्ग्रंथन का महत्व प्रतिपादित है। जब तक ये अंगागी भाव से संयोजित नहीं होते तब तक उद्दात के साधक नहीं बन सकते। अंग अलग अलग रहकर शोभाजनक नहीं होते, अपने अपने स्थान पर अनुपातिक रूप में जुड़कर ही वे सौंदर्य की सृष्टि करते हैं। यही स्थिति उद्दात के निष्पादक तत्वों की भी है। कैसे विचार के साथ कैसे भाव का मिश्रण उचित होगा, उसमें कौन से अलंकार उपयुक्त होंगे, किस तरह के पद किस क्रम के विन्यस्त होकर अभीष्ट प्रभाव उत्पन्न करें, इन बातों का ठीक ठीक आकलन किए बिना रचना में गरिमा नहीं आ सकती। लोंगिनुस के अनुसार अभिव्यंजना के प्रकर्ष में लय की बहुत बड़ी भूमिका है। लय की स्थिति पद्य में ही नहीं गद्य में भी होती है। लय का अभाव और लय का अतिरेक दोनों अवांछनीय है। मूल्यांकन। पहला, पेरिहुप्सुस की रचना के मूल में लोंगिनुस का उद्देश्य भाषण कला की शास्त्रीय विवेचना। भाषण शास्त्र अनुनयन का शास्त्र है और यूनान के भाषण शास्त्रियों के सामने उसका यही प्रमुख उद्देश्य रहा है। स्वयं अरस्तु ने भाषण शास्त्र पर एक स्वतंत्र ग्रंथ लिखा जो आकार और विस्तार में काव्य शास्त्र की अपेक्षा कहीं बड़ा है। लोंगिनुस की विशेषता इसमें है कि उन्होंने भाषण शास्त्र का उद्देश्य अनुनयन नहीं लोकोत्तर आह्लाद या सम्मोहन ट्रांसपोर्ट या इंचेंटमेंट माना है। उद्देश्य की यह तात्विक भिन्नता उन्हें अन्य भाषण शास्त्रियों से अलग ही नहीं करती, ऊपर भी उठा देती है। उस युग में कवि के उद्देश्य थे उपदेश और आनंद और भाषणकर्ता या गद्य लेखक का उद्देश्य था अनुनयन। जैसा स्कॉट जेम्स ने लिखा है, उपदेश आनंद और अनुनयन तीन शब्दों के सुसूत्र में संसार के सभी अंतः प्रेरित कवियों विदग्ध इतिहासकारों ओजस्वी वक्ताओं और गंभीर दार्शनिकों के प्रयास अंतर्विष्ट थे, किंतु वाणी की लोकोत्तरता चमत्कारिता सम्मोहकता को समेटने की शक्ति इनमें से किसी में नहीं थी। वाणी का वह मादक प्रभाव जो सुनते ही श्रोता को आत्मविस्मृत या वेद्यांतर स्पर्श शून्य बना देता है, न तो ठोठा उपदेश है न कोड़ा आनंद न निरा अनुनयन, पर सबसे परे तन्मीय भाव की वह ऐसी दिव्य चेतना है जिसमें ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान का भेद तिरोहित हो जाता है और केवल आह्लाद अवशिष्ट रह जाता है। इस अलौकिक अनुभूति को ही लोंगिनुस ने वाणी का चरम प्रकर्ष घोषित किया है और इसकी सिद्धि के साधन को उद्दात की संज्ञा से अभिहित किया है। उद्दात और रस में कितना साम्य है। दूसरा, लोंगिनुस के अध्ययन का क्षेत्र जितना विस्तीर्ण है परिसंशन की क्षमता उतनी ही गहरी है। उनका अध्ययन चिंतन से पुष्ट है और परिसंशन विश्लेषण से समृद्ध। पेरिहुप्सुस 1000 वर्षों की दीर्घ अवधि में उत्पन्न लगभग 50 यूनानी रोमी लेखकों की कृतियों की उद्धरणों का खजाना है। रीज रॉबर्ट्स ने लिखा है कि यदि दुर्दैव से यूनानी ललित कला साहित्य लुप्त हो जाए तो पेरिहुप्सुस में उद्धृत संदर्भों की सहायता से उसके वैशिष्ट्य की बहुत कुछ झांकी मिल सकती है। लोंगिनुस द्वारा उद्धृत संदर्भ उद्धरण मात्र नहीं है बल्कि लोंगिनुस की आलोचनात्मक टिप्पणियों के आलोक में उसकी रमणीयता और सार्थकता और भी निखर उठी है। लोंगिनुस की टिप्पणियों में उद्धरणों का विषयगत और शिल्पगत गुण दोष विवेचन ऐसे तलस्पर्शी है जैसा उस युग में किसी आलोचक में नहीं मिलता, अस्तु में भी नहीं। काव्य के प्रकर्ष और अपकर्ष की उन्हें अद्भुत पहचान है और उसे व्यक्त करने वाली समर्थ भाषा भी है। उनकी दृष्टि उत्तमता को अनायास ही देख लेती है, उसकी तलाश कभी नहीं चुकती। काल की दृष्टि से इतिहासकारों ने यूनानी रोमी अभिजात साहित्य को तीन खंडों में बांटा। यूनानी 5वीं-4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, सिकंदरियाई 3री और 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व और रोमी 1ली सदी ईस्वी पूर्व और 1ली शताब्दी ईस्वी। यूनानी को हेलेनिक और सिकंदरियाई को हेलेनिस्टिक भी कहते हैं। यूनान के सृजनात्मक वैभव के अस्त जाने पर निकटवर्ती भूभागों में यूनानी प्रभाव की छाया में जो रचनाएं हुई उन्हें ही हेलेनिस्टिक कहा जाता है। तात्पर्य कि हेलेनिक का संबंध सीधा यूनान एथेंस से था, हेलेनिस्टिक का यूनान द्वारा प्रभावित भूभागों से। हेलेनिक का केंद्र एथेंस था, हेलेनिस्टिक का सिकंदरिया मिस्र में। हेलेनिक का अवसान 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंत में ही हो चुका था। अस्तु इसके अंतिम कीर्ति स्तंभ थे। उसके बाद 200 वर्षों तक हेलेनिस्टिक प्रभाव उदग्र रहा। 1ली सदी ईस्वी पूर्व में रोमी साम्राज्य के उदय के साथ वह भी समाप्त हो गया और रोम सारस्वत केंद्र बन गया। इसमें काल की दृष्टि से हेलेनिस्टिक्स लोंगिनुस के अधिक निकट जान पड़ता है, किंतु यह देखकर कि यह मध्यम कोटि का साहित्य है लोंगिनुस ने अपने उदाहरण में यूनानी हेलेनिक साहित्य से ही लिए हैं। उत्तम मध्यम का भेद करने में उनको कभी संदेह या भ्रम नहीं हुआ और जो सच्चा अभिजात साहित्य था उसी के उद्धरणों से उन्होंने उद्दात का स्वरूप स्पष्ट किया है। यदि कहीं हेलेनिस्टिक साहित्य के उदाहरण दिए गए हैं तो दोषों के स्पष्टीकरण के लिए, यो तो उनकी दृष्टि सर्वत्र उत्तम पर ही पड़ी है पर उसमें भी होमर 63 है, हालांकि दोष दिखानों में उन्होंने होमर को भी नहीं बख्शा है। तीसरा, लोंगिनुस के अनुसार उद्दात का लक्षण है अभिव्यंजना का अनिर्वर्सनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट्य। यह लक्षण अत्यंत व्यापक है और इसकी सीमा में भाषण भी आता है, लेखन भी, गद्य भी, पद्य भी। होमर के महाकाव्य, डेमोस्टनेस की वक्तृताएं, प्लेटो के संवाद, साफो के प्रगीत, इब्रानी उत्पत्ति ग्रंथ के आरंभ वचन, सर्वत्र उद्दात की स्थिति संभव है। शर्त केवल एक है, अभिव्यंजना में आह्लाद की मात्रा सम्मोहन की शक्ति होनी चाहिए। उद्दात एक वाक्य में भी रह सकता है और लंबे संदर्भों में भी। चौथा, शास्त्रवादी आलोचकों मुख्यतः प्लेटो, अरस्तु और होरेस के साथ लोंगिनुस की तुलना उसके महत्व को समझने में सहायक होगी। यहाँ यह तुलना संभवतः विस्मृत न होकर संक्षिप्त ही होगी। क, प्लेटो और अरस्तु की अपेक्षा लोंगिनुस की भाषिक स्थिति अधिक व्यापक है। प्लेटो और अरस्तु को यूनानी भाषा के अतिरिक्त और किसी भाषा का साहित्य उपलब्ध नहीं था, इसलिए उन्होंने जो कुछ कहा वह एक भाषा की सीमित दृष्टि से। अरस्तु के काव्य विषयक सिद्धांतों का आधार प्रधानता एक प्रकार का साहित्य अर्थात नाटक है। उसकी भी केवल एक उपविद्या दुखांतक, वह भी केवल यूनानी। इस सीमित सामग्री से उद्भूत काव्य सिद्धांत भी सीमित हो तो कोई आश्चर्य नहीं। इसके विपरीत लोंगिनुस की तीन भाषाओं यूनानी, इब्रानी और लैटिन के विकसित साहित्य उपलब्ध थे, इसलिए उनकी दृष्टि में व्यापकता है। जहाँ अरस्तु के दुखांतक संबंधी सिद्धांत यूरोप के ही उत्तरवर्ती दुखांतकों पर घटित नहीं होते, वहाँ लोंगिनुस के उद्दात विषयक सिद्धांत प्रायः किसी देश के और किसी काल के साहित्य का निकस बनने में समर्थ है। उनमें एक प्रकार की सार्वभौमता या आर्धकालिकता है, कालिकता है। ख, काव्य की आनंद प्रदता को प्लेटो ने भी स्वीकार किया था। वे काव्य के आनंद की स्थिति ग्रहिता में नहीं मानते थे बल्कि श्रष्टा में भी, जैसा इयोन में उनकी काव्य सर्जन संबंधी उक्तियों से स्पष्ट है। फिर भी उन्होंने नैतिक और राजनीतिक आधारों पर काव्य को त्याज्य ठहराया। कहें तो वह एक प्रकार की नैतिक भीरुता थी, भले ही वह समसामयिक राजनीतिक कारणों से प्रेरित रहा हो। अरस्तु ने प्लेटो से थोड़ा आगे बढ़कर किंतु दबी जवान से आनंद की स्थिति स्वीकार की। काव्यशास्त्र में आनंद शब्द केवल दो बार आया है। उनका बल विरेचन पर रहा, अर्थात भावों के उद्रेक का नैतिक मनोवैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत कर वे प्लेटो की आपत्ति का निराकरण करने में, अर्थात यह सिद्ध करने में अधिक उन्मुख रहे कि उद्रेकती भाव अवांछनीय नहीं है। होरेस ने आनंद के साथ उपदेश को भी मिला दिया, तात्पर्य कि आनंद को काव्य का मौलभूत प्रयोजन मानने में सबको किसी न किसी तरह की हिचक रही। इस पृष्ठभूमि में लोंगिनुस ने साहसपूर्वक उच्च स्वर में घोषणा की है कि आह्लाद और एकमात्र आह्लाद ही काव्य का, नहीं नहीं संपूर्ण वाग विलास का परम प्रयोजन है। उसके सामने उपदेश अनुनयन आदि तुच्छ है। ग, प्लेटो ने काव्य को दार्शनिक की दृष्टि से देखा, सही, पर उसमें दार्शनिक की तटस्था नहीं रही। उनके विवेचन में काव्य बाह्य तत्व नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि घुस आए। अरस्तु ने काव्य पर विचार करते इसमें तर्कशास्त्री की भंगिमा अपनाई, उसके स्वरूप या भेद प्रभेद का तर्कसम्मत विवेचन किया। उसके विवेचन में गंभीरता तो है पर काव्य की चेतना लुप्त हो गई है। होरेस ने न तो गंभीरता है न विश्लेषणात्मकता, उनका उद्देश्य नए लेखक को व्यावहारिक मार्गदर्शन कराना मात्र है। लोंगिनुस की दृष्टि इन तीनों से भिन्न है, वे काव्य को शुद्ध सौंदर्य शास्त्र के निकस पर देखना परखना चाहते हैं। 19वीं शताब्दी के पूर्व यह निर्मल निकस केवल लोंगिनुस के पास मिलता है और किसी के पास नहीं। इस तरह लगभग 2000 वर्षों तक उनका अनाविल सौंदर्य शास्त्रीय भाव बोध वाच्यार्थ में भी अद्वितीय बना रहा। सेंसबरी ने ठीक ही लिखा है कि उनकी आलोचना का प्रकार शुद्ध सौंदर्यवादी है और उसमें भी सर्वोत्कृष्ट है। घ, प्लेटो के काव्य संबंधी मंतव्य उनकी विभिन्न कृतियों से बिखरे पड़े हैं। जमकर उन्होंने कहीं भी काव्यालोचना के विविध पक्षों को पर कुछ नहीं कहा है। जो कहा भी है उनमें दृष्टि निषेध परक ही रही है और उनमें भी एकरूपता नहीं, प्रसंगानुसार विचारों में परिवर्तन होता गया है। डी लॉज तक आते आते वे बहुत कुछ समझौतावादी हो गए। जैसा हमने प्लेटो के विवेचन के प्रसंग में दिखाया कि तब तक संभवतः एथेंस की पराजय का घाव बहुत कुछ भर चला था और काव्य का आकर्षण अपना प्राक्तन प्रभाव जमाने लगा था। गंभीरता की प्लेटो में कमी नहीं थी, वैसे मौलिक विचारक यूरोप में गिने चुने हुए हुए, पर उन्होंने काव्य को गंभीर विवेचन का विषय बनाया ही नहीं। भारत में भी काव्यशास्त्र बहुत दिनों तक व्याकरण और दर्शन के प्रभाव तक से अपने को मुक्त नहीं पड़ पाया सका था। अरस्तु अपने काव्यशास्त्र में काव्य का सैद्धांतिक विवेचन अवश्य किया, पर उनकी भंगी सौहृदय भावक ही नहीं वस्तुवादी विश्लेषक की रही। उनकी स्थिति पुष्पित उद्यान में उस वनस्पति शास्त्री की है जो फूलों के रूप रंग या सुरभि सौंदर्य से तटस्थ होकर पंखुड़ियों की गणना या रेशों की संरचना के अध्ययन में लीन है। उसका संरचनात्मक अध्ययन तो ठीक होगा ही, पर उसमें वह उमंग और उल्लास नहीं होगा जो उद्यान में जाने पर होना चाहिए। लोंगिनुस में ना तो प्लेटो की दार्शनिक गंभीरता है और न अरस्तु की सैद्धांतिक विवेचकता। वे सुरुचि संपन्न प्रबुद्ध भावक हैं, वे काव्य के सौंदर्य का स्वयं आस्वादन कर सकते हैं और दूसरों को भी करा सकते हैं। यदि लोंगिनुस में अरस्तु की अंतर्भेदी बुद्धि नहीं है तो अरस्तु में भी लोंगिनुस की पैनी संवेदनशीलता नहीं है, और यह संवेदनशीलता केवल आत्मानुभूति तक सीमित नहीं है बल्कि उस अनुभूति के संप्रेषण में भी समर्थ है। रो, प्लेटो ने अनुकरण को यथार्थ की नकल कहकर उपेक्षणीय सिद्ध कर दिया था। अरस्तु ने अनुकरण की व्याख्या कार्य व्यापार के परिप्रेक्ष्य में की। हेरोस ने क्लासिकी ढांचे के तकनीकी अनुकरण में ही अनुकरण की सार्थकता देखी। लोंगिनुस इन तीनों से भिन्न दृष्टि का परिचय देते हुए कहा कि अनुकरण वह आंतरिक प्रकाश है जो पूर्ववर्ती प्रवीण कलाकारी की कृतियों के अवगहन से उपलब्ध होता है और नवीन सौंदर्य सृष्टि का प्रेरक बनता है। अनुकरण को सर्जक ऊर्जा के रूप में देखने का यह दृष्टि मौलिक तो है ही, आधुनिक भी है। लोंगनियस का कहना है कि प्लेटो की लेखनी का वैभव होमर के अनुकरण का ही परिणाम है। कालिदास ने भी अपने पहले के कवियों का ऋण मुक्तकंठ स्वीकार किया है। अथवा कृतवाग द्वारे वंशेस्मिन पूर्व सूर भी मनोवज्र समुत्कीर्णे सूत्रेश्य वाष्टि मेघट रघुवंश, पहला अध्याय चौथा श्लोक। पहले के मनीषियों ने वाणी के जो द्वार खोल दिया है उसके कारण मेरी गति वैसे ही सरल हो गई है जैसे छिद्रित मणि में धागे की। तुलसीदास की चमत्कारी वाक्सिद्धि के पीछे भी साहित्य की लंबी समृद्ध प्रेरक परंपरा रही है, जिसे नाना पुराना पुराना निगमामम सम्मतम वाले श्लोक में उन्होंने व्यक्त किया है। तात्पर्य कि प्राचीन महाकवियों के उपासक एक प्रकार से प्रेरक प्रभाव का अनुभव करते हैं जो सर्जन में सहायक होता है। चौ प्लेटो काव्य सर्जन में अंतः प्रेरणा की महत्वपूर्ण भूमिका मानते हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि जब तक काव्य देखी भी का अनुग्रह नहीं होता और जब तक वह दिव्य उन्माद से कवि को आविष्ट नहीं करती तब तक काव्य की रचना संभव नहीं है। अरस्तु की तार्किक और वैज्ञानिक बुद्धि अंतः प्रेरणा को महत्व नहीं देती। लोंगिनस प्लेटो का अनुसरण करते दिखाई देते हैं। उद्दात की निष्पत्ति में वे अनेक विध अंतः प्रेरणा का उल्लेख करते हैं, जैसे भाव को वे अंतः प्रेरित मानते हैं, पूर्ववर्ती कवियों का प्रेरक योगदान स्वीकार करते हैं। कुल मिलाकर अरस्तु की तुलना में लोंगिनस का प्लेटो से अधिक साम्य है। प्लेटो उनके आदर्श प्रतीत होते हैं। लोंगिनस की अभिव्यंजना की उन्मुक्तता, भावकता, कलात्मकता बहुत कुछ प्लेटो से मिलती है। प्लेटो से वे वैसे ही प्रभावित हैं जैसे प्लेटो होमर से। अरस्तु से लोंगिनस का साम्य कम वैसम्य अधिक है। जैसा रीज रॉबर्ट्स ने लिखा है, लोंगिनस वस्तुनिष्ठ नहीं आत्मनिष्ठ है, विश्लेषक नहीं आनंदी है। परिपक्व संदेहवादियों को संतुष्ट करने की अपेक्षा नवयुवकों में उमंग जगाने की उनमें अधिक क्षमता है। वे आह्लाद तथा अंतः प्रेरणा की बातें करते हैं, विरेचन या सामान्य की नहीं। पांचवा, लोंगिनस की समीक्षा दृष्टि पर्याप्त व्यापक है। भाषण कला के संदर्भ में विचार करते हुए उन्होंने जो मंतव्य प्रस्तुत किए हैं वे काव्य कला पर भी पूर्णतः घटित हो जाते हैं। उन्होंने विचार, भाव, अलंकार, पद, संरचना, लय, इन सब के समुचित समन्वय पर बल दिया है। इनमें से किसी तत्व के अतिरेक और अल्पता के भी विरोधी है। वस्तुतः यह औचित्य का ही प्रकार भेद है। इसका साध्य यह है कि आह्लादक भाव जो भी साधन अथवा सिद्धि में सहायक हो सकते हैं वे सब उन्हें स्वीकार्य है। डेविड डेचेज ने उद्दात को प्रथम भावात्मक साहित्य सिद्धांत, फर्स्ट इफेक्टिव थ्योरी ऑफ लिटरेचर कहा है। उन्हें यदि रस सिद्धांत की जानकारी होती तो उद्दात के संदर्भ में वे प्रथम शब्द का प्रयोग न करते। रस सिद्धांत को छोड़ भी दे तो अरस्तु का विरेचन सिद्धांत भी भावात्मक इफेक्टिव ही है। दुखांतक की भावात्मकता के अतिरिक्त को लेकर ही प्लेटो ने उसे वर्जनीय कहा था। अरस्तु ने विरेचन के द्वारा उस अतिरिक्त के उपशम का हल निकालकर प्लेटो की आपत्ति का निराकरण किया और भावों की संतुलित आनंदप्रद विश्रांति को काव्य का प्रयोजन बताया। विरेचन और आनंद दोनों का संबंध भाव से और भाव का प्रभाव से है। अतः यह कहना कि लोंगिनस प्रथम भावात्मक साहित्य सिद्धांत के उद्भावक है वस्तु स्थिति से समर्थित नहीं है। छ, उद्दात का निकष इतना सूक्ष्मेशी है कि किसी कृति के लिए उस पर खड़ा उतरना बहुत कठिन है। लोंगिनस कृतिकार से लेकर कृति तक प्रकर्ष की पराकाष्ठा के आग्रही है। एक तो कृतिकार में विचार की भव्यता के साथ भाव की उद्यमता चाहिए, दूसरे कृतिकार की आत्मा महान होनी चाहिए क्योंकि उद्दात महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। क्षुद्र जीवन बिताने वाला वैसे चमत्कार उत्पन्न नहीं कर सकता जो अवनीश्वर हो। ये तो कृतिकार की चारित्रिक विशेषताएँ हुई। कलाकार के रूप में उसे बिंब विधान, समानुभूति, अलंकार, भाषा और आंगिक संरचना में निपुण होना चाहिए। इन दोनों पक्षों के समीचीन संयोजन से ही उद्दात की निष्पत्ति हो सकती है। उद्दात की सफलता के भी कई मानदंड हैं। क, जो कृति आह्लादित नहीं करती वह उद्दात नहीं है। ख, जो तत्काल आह्लादित नहीं करती वह उद्दात नहीं है। ग, जो बार बार की आवृत्ति के बाद भी आह्लादित नहीं करती वह उद्दात नहीं है। घ, जो भिन्न रुचि और सुयोग्य निर्णायकों के समान भाव से आह्लादित नहीं करती वह उद्दात नहीं है। स्पष्ट है कि कृति में आह्लादकता का होना ही पर्याप्त नहीं है। उस आह्लादकता में और भी कई गुण होने चाहिए, जैसे उसमें तत्काल आह्लादन की क्षमता होनी चाहिए, बार बार सुनने पर भी उसका आकर्षण कम नहीं होना चाहिए, विभिन्न रुचियों के भावकों और समर्थ आलोचकों को समान भाव से संतुष्ट करने की उसमें शक्ति होनी चाहिए। उद्दात का यह लक्षण महाकवि मार्ग की उक्ति का स्मरण दिला देता है। छने छने यन्न वटा मुपेति तदेव रूपम रमणीयताया, अच्छा सौंदर्य वही है जो प्रतिपल नया प्रतीत हो, ऐसा सौंदर्य कितना विरल है। सातवां, लोंगिनस ने पूर्व काव्य के स्वरूप और प्रयोजन का निरीक्षण परीक्षण मुख्यतः कृतिनिष्ठ था और गौंटा भावक निष्ठ। अरस्तु ने दुखांतक का स्वरूप निर्धारण कृतियों को ही ध्यान में रखकर किया। स्वरूप निर्धारण के अनंतर उन्होंने उसके प्रयोजन पर भी विचार किया और विरेचन का महत्व स्थापित किया। अन्य आलोचकों की भी यही स्थिति है। इस विवेचन में कृति है, प्रयोजन है, किंतु कृतिकार कहीं नहीं है। लोंगिनस ने इस त्रुटि का निराकरण करते हुए कृतिकार को केंद्र में ला रखा, उसमें दो धर्मों, विचार की महत्ता और भाव की उद्यमता की स्थिति आवश्यक मानी। यो वह कृतिकार तीन शिल्पगत धर्मों का भी आश्रय है। अलंकार, भाषा तथा संरचना भी उसी की रुचि तथा शक्ति से नियंत्रित होती है, पर विचार और भाव तो उसके व्यक्तित्व के सहज अंग है। इनके संयोजन से निष्पन्न उद्दात की स्थिति कृति में है और आह्लाद की भावक में। इस प्रकार कृतिकार में विचार और भाव की, कृति में उद्दात की और भावक में आह्लाद की स्थिति दिखाकर लोंगिनुस ने काव्य को व्यापक आयाम दिया। एब्रम्स ने कृतिकार के महत्व की स्वीकृति का श्रेय लोंगिनुस को देते हुए कहा कि जो काम 19वीं शताब्दी में हुआ उसका पूर्वाभास लोंगिनुस ने लगभग 2000 वर्ष पहले दे दिया था और शास्त्रवादी आलोचकों में यह बोध एकमात्र लोंगिनुस को हुआ। अरस्तु या होरेस की विचार परिधि के केंद्र में कृति थी, कृतिकार नहीं। लोंगिनुस ने कृतिकार को केंद्र में रखकर एक नई दिशा का संकेत किया। आठवां, कृतिकार के महत्व की स्वीकृति में एक और अर्थ निहित है और वह है सृजनात्मक प्रणोदन, क्रिएटिव अर्ज की के महत्व का प्रतिपादन। लोंगिनुस के अनुसार कृतिकार में सर्वोत्तम महान और भव्य विचारों की उद्भावना की क्षमता होनी चाहिए। भव्य विचारों का उद्भावना कल्पना का कार्य है और कल्पना ही सृजना की भूमि तैयार करती है। इस प्रकार भव्य विचारों की उद्भावना के द्वारा लोंगिनुस सृजनात्मक प्रणोदन को निर्दिष्ट करते हैं। फिर अंतः प्रेरित और प्रबल भाव में अभिव्यंजनात्मक प्रणोदन की स्पष्ट ध्वनि है। भाव की अंतः प्रेरणा और प्रबलता स्वभावतः अभिव्यंजना में पर्यवसित होती है। जब वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि काव्य प्रबल भावों का सहज उच्छलन है तो यही सिद्ध करना चाहते हैं कि भावों का प्रबल वेग अनायास काव्य बन जाता है। भारतीय परंपरा में भी श्लोक छंद अर्थात काव्य की उत्पत्ति भावावेग से मानी गई है। क्रौंचद वद वियोगत्थो शोक श्लोक त्वामकता, क्रौंच पक्षियों के जोड़े में से एक के वध से वाल्मीकि के मन में शोक का ऐसा वेग उमड़ा कि वह छंद बनकर फूट पड़ा। कहने का अभिप्राय यह है कि भावावेग की प्रबलता में रोमांटिक कवियों ने जिस सृजनात्मक अभिव्यंजना की प्रतिष्ठा की वह लोंगिनुस में वर्तमान है और यहाँ भी उसने एक महत्वपूर्ण काव्य सिद्धांत का पूर्वाभास दिया है। प्लेटो ने आनंद और अतिरेक को दिव्य उन्माद की संज्ञा देकर काव्य सृजन का प्रेरक माना था। लोंगिनुस ने आनंद के स्थान पर भाव मात्र को रखकर उसे व्यापक और सृजनात्मक प्रक्रिया का आधार बनाया। साथ ही उन्होंने यह भी प्रतिपादित किया कि काव्य की उत्पत्ति ही भाव की प्रबलता से नहीं होती, उसकी परिणति भी भाव की प्रबलता में ही होती है। इसलिए कवि की भावोच्छल अभिव्यंजना भावक को भी भाव विभोर कर देती है। तात्पर्य कि लोंगिनुस ने सर्जक को ही उसका अहरित महत्व नहीं दिया बल्कि सर्जन प्रक्रिया को भी रेखांकित किया। ये दोनों विशेषताएं उनकी मौलिकता को उजागर करती है और अन्य शास्त्रवादी आलोचकों से उन्हें ऊपर उठा कर देती है। 9, शास्त्रवादी क्लासिकल और स्वच्छंदतावादी रोमांटिक दोनों ही वर्गों के आलोचकों ने लोंगिनुस को अपने अपने खेमे में रखने का प्रयास किया है। स्वच्छंदतावादी खेमे के प्रबल पक्षधर हैं स्कॉट जेम्स और एब्रम्स। स्कॉट जेम्स ने तो लोंगिनुस को पहला स्वच्छंदतावादी आलोचक, द फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक ही कह डाला। लोंगिनुस को रोमांटिक आलोचक मानने के पक्ष में निम्नलिखित तर्क है। क, उन्होंने कृतिकार के महत्व को प्रमुखता दी है। ख, काव्य सृजन में भाव की प्रेरणा और प्रबलता को योगदान माना है। ग, उन्होंने कृति के गुणों को देखने के बदले उसके सृजन को कृतिकार की बौद्धिक शक्ति तथा भावावेग में देखने का प्रयास किया है। घ, लोंगिनुस ने विश्लेषण के पहले आह्लाद को काव्य प्रकर्ष का मानदंड स्वीकार किया है। वह निश्चित ही प्राचीन आलोचना की विश्लेषणात्मक तथा निर्णयात्मक पद्धति के स्थान पर रुचि तथा संवेदनशीलता के प्रतिष्ठापन का पूर्वाभास है। शास्त्रवादी आलोचना में कृति के उत्कर्षा प्रकर्ष का निर्णय विश्लेषण के आधार पर किया जाता है। स्वच्छंदतावादी आलोचना में आलोचक की रुचि तथा संवेदनशीलता के आधार पर। रो, पूरी रचना के बदले खंडों में सौंदर्य और आह्लादकत्व की स्वीकृति भी लोंगिनुस की रोमांटिक प्रवृत्ति को सूचित करती है। जो लोग लोंगिनुस को क्लासिकल शास्त्रवादी मानते हैं उनके तर्क हैं। क, लोंगिनुस ने कहा कि काव्य समीक्षा परिपक्व अनुभव का चूड़ांत फल है। स्वच्छंदतावादी आलोचक अनुभव की परिपक्वता में विश्वास नहीं करता, वह अपनी रुचि या प्रतिक्रिया को ही प्रमाण मानता है। ख, लोंगिनुस ने प्राचीन कवियों से प्रेरणा ग्रहण करने का और उन्हें आदर्श मानने का सुझाव दिया है। ग, लोंगिनुस कृतिकार की प्रेरणा की उन्मुखता जितनी आवश्यक समझते थे उतना ही नियम का अंकुश भी। घ, वे काव्य के निर्णय और मूल्यांकन के लिए सुयोग्य निर्णायक मंडल के अभिमत को मान्यता देते। स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के तर्क प्रायः संबल है, इसलिए निसंदिग्ध रूप से लोंगिनुस को शास्त्रवादी या स्वच्छंदतावादी कहना कठिन है। संभवतः इसी उलझन के कारण स्कॉट जेम्स ने लेख के उपसंहार में अपना अभिमत संशोधित करते हुए कहा है कि लोंगिनुस को शास्त्रवाद स्वच्छंदतावाद से स्पष्ट तो था पर आच्छन्न नहीं, शास्त्रवाद के संपर्क में उनके स्वच्छंदतावाद को स्वस्थ और दीप्त बना दिया था। 10, लोंगिनुस अलंकार योजना और पद योजना से पृथक तब जब रचना की गरिमा की बात करते हैं तो यह प्रतिपादित करना चाहते हैं किसी कृति की रचना उनके संरचना की समग्रता है और ऊपर से आरोपित तत्व या व्यवस्था मात्र नहीं, उसका सौंदर्य अथवा प्रभाव संगीत संगता में नहीं देखना चाहिए, संगता में ही देखना चाहिए। काव्य की संगता को पहले पहल प्लेटो ने रेखांकित किया था, तब से आलोचना का यह प्राय आवर्ती नियम रहा है। 11. लोंगिनुस ने लय की स्थिति कृति में, चाहे वह पद्य हो या गद्य, अद्यंत मानी है। रीच रॉबर्ट्स की दृष्टि में लय का यह अतिरेक अनावश्यक है, किंतु एलिन टेट ने इसे लोंगिनुस की आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि की उत्तमता के रूप में ग्रहण किया और कहा है कि कॉलरिज के पूर्व किसी दूसरे आलोचक में यह उपलब्ध नहीं होता। टेट का यह भी कहना है कि किसी भी प्राचीन आलोचक की तुलना में लोंगिनुस साहित्यिक रूप से व्यापक सिद्धांत के अधिक निकट पहुंचे हुए हैं। 12. लोंगिनुस ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है कि सदोष उत्तमता और निर्दोष मध्यमता में कौन अधिक ग्राह्य है, और उन्होंने पूर्ण विश्वास तथा श्लाघ साहस के साथ सदोष उत्तमता के पक्ष में अपना मत दिया है। उनका कहना है कि कमजोर आदमी इतना संभल संभल कर फूक फूक कर चलता है कि वह न फिसले तो कोई आश्चर्य नहीं। इसके प्रतिकूल जो सबल और ऊर्जास्वल है, उसके पाँव उमंग और मस्ती में कभी नीचे ऊंचे भी पड़ते, पर इससे उसकी सबलता और ऊर्जास्वलता में कोई बट्टा नहीं लगता। वह चाहे जहाँ भी रहे, अपनी स्वप्रमाणता के कारण उत्कृष्ट तथा आकर्षक ही रहेगा। इसलिए सामान्यता की शुद्धि की अपेक्षा प्रतिभा का स्खलन भी कहीं अधिक वरेण्य है। 13. जैसे स्वाभाविक है, लोंगिनुस की कुछ सीमाएं भी हैं। उदाहरणतः उद्दात के स्वरूप निर्धारण में अनवस्था दिखाई देती है। भव्य और उद्दात एक ही अर्थ के वाचक है, अतः भव्य की सहायता से उद्दात के अर्थ के स्पष्टीकरण में एक प्रकार की अनवस्था आ जाती है। लोंगिनुस के विषय की स्पष्ट प्रतिपादन क्षमता की भी कमी है। उनकी भाषा प्रायः काव्यात्मक और चक्करदार हो जाती है, जिसमें अभिप्राय छिप सा जाता है। विषयांतर, अनपेक्षित विस्तार और प्राविधिक ग्रंथियों को वे अक्सर उलझ जाते हैं। आलोचना की उपयुक्त संक्षिप्त और सारगर्भ अभिव्यंजना सर्वत्र दृष्टिगोचर नहीं होती। रीज रॉबर्ट्स का कहना है कि उनकी शैली के कई दोष, जैसे विषयांतर या काव्यात्मकता, उस युग के दोष है जिसमें लोंगिनुस लिख रहे थे। अपने समय में उद्दात के ह्रास के कारणों पर विचार करते हुए लोंगिनुस का कहना है कि कुछ लोग लोकतंत्र के ह्रास को इसका कारण बताते, किंतु इसके लिए लोकतंत्र के ह्रास से बढ़कर समसामयिक धनलोलुपता और विलासप्रियता उत्तरदायी है। सेंसबरी ने उद्दात विषयक ग्रंथ में इस उपसंहार को विलक्षण बताते हुए कहा है कि उपसंहार ही है नहीं, साथ ही यह हेतु नहीं, हेत्वाभास है। ऐसे कारणों से साहित्य के उत्थान पतन का संबंध नहीं होता, क्योंकि युग स्वतंत्रता का, दासता का, विलास का, सादगी का, विश्वास का, अविश्वास का, चाहे जैसा भी हो, सभी में उद्दात का सर्जन संभव है, बशर्ते व्यक्ति उपयुक्त हो, प्रतिभा संपन्न हो। यदि प्रतिभा संपन्न सृष्टा नहीं है तो रचना उद्दात नहीं हो सकती। 14. यद्यपि शैली की प्रांजलता सामान्यतः काम्य है, किंतु चूंकि उद्दात का संबंध विराटता तथा कुछ दूर तक रहस्यमयता से है, इसलिए प्रांजलता को उद्दात का नित्य धर्म नहीं माना जा सकता। उद्दात के 5 सोटों में लोंगिनुस ने पहला स्थान विचार की महत्ता या भव्यता को दिया है। उस महत्ता या भव्यता का भार उठाने में प्रांजल शैली सदा सफल नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में अभिव्यंजना कुछ अस्पष्ट, कुछ धुंधली भी हो तो कोई आश्चर्य नहीं। इसी बात को ध्यान में रखकर एडमंड बर्क ने कहा कि स्पष्ट विचार तुच्छ विचार का पर्याय है। ए क्लियर आइडिया इज अनदर नेम फॉर लिटिल आइडिया। बर्क के मत में अनिश्चितता, अस्पष्टता तथा अनंतता से उद्दात का निकट संबंध है। 15. लोंगिनुस साहित्य की रूढ़ि या रूप मात्र नहीं मानते, बल्कि उसे राष्ट्रीय जीवन का प्रतिफलन मानते। उनके मत से महान शैली महान परिवेश और महान घटनाओं की उपज होती है। पेरिहुप्सुस के अनेक संदर्भों, अध्याय 9, 35 और 44 में व्यक्तिक तथा राष्ट्रीय नैतिकता का दृढ़ आग्रह है, और वे चाहते हैं कि वह नैतिकता साहित्य में भी हो। उनका अपना नैतिक बोध इतना उदग्र है कि उसका अभाव न तो वे साहित्य में देखने को प्रस्तुत है, न राष्ट्रीय जीवन में। इसलिए धनलोलुपता और विलासप्रियता से उत्पन्न यूनान के नैतिक पतन पर वे अपना आंतरिक क्षोभ प्रकट करते हैं। 16. लोंगिनुस प्राचीन होते हुए भी नवीन है, क्योंकि उनके सिद्धांतों की प्रासंगिकता आहत नहीं हुई है। वे नवीन ही नहीं, आधुनिक भी है। तुलनात्मक आलोचना, जिसका प्रारंभ प्रायः 1 शताब्दी पूर्व हुआ, लोंगिनुस के समय में अकल्पनीय थी। उनके पहले या उनके बाद 1500 वर्षों से अधिक तक तुलनात्मक आलोचना का प्रश्न ही नहीं उठा। इस पृष्ठभूमि में लोंगिनुस की महत्ता प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखती। इसलिए और ओडिसी की अथवा डोमेस्टिनेस और सिसोरी की तुलनाओं में विश्लेषण कम और काव्यात्मकता अधिक है, फिर भी लोंगिनुस की निष्कर्ष बहुत कुछ सही है। इलियड और ओडिसी की तुलना एक भाषा के परिपेक्ष में, तो डेमोस्टनेस और सिसोरो की तुलना 2 भाषाओं, यूनानी और लेटिन के परिपेक्ष में। रुचि का मानदंड उनकी आधुनिकता का दूसरा पहलू है। पेरिहुप्सुस के 7वें अध्याय में उन्होंने रुचि का जो मानदंड निर्धारित किया है, वह कठोर तो है पर निरपवाद भी नहीं। उद्दात की पहचान बताते हुए वे कहते हैं कि उद्दात वह है जो सबको आह्लादित करे, सदा आह्लादित करे, बार बार के आह्लादन के बाद भी फीका न पड़े, स्मृति पटल पर अस्थायी रूप से अंकित हो जाए और मन को चिंतन मनन की प्रचुर सामग्री दे। यह रुचि काव्य के गृहीता को अनियंत्रित प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि उद्दाट की सफलता एवं प्रभाविता का प्रमाण है। इसलिए आत्मिष्ट होते हुए भी वस्तुनिष्ठ है। उनका शुद्धता संबंधी मंतव्य भी शास्त्रवादी युग के लिए चुनौती है। दोषहीन किंतु घटिया काव्य की तुलना में सदोष किंतु उत्तम काव्य को श्रेष्ठ बतलाना केवल चौंकने वाली चीज नहीं है कि अपितु काव्योत्कर्ष की पहचान करने कराने वाली सूक्ष्म अंतर्दृष्टि है, जिसमें कला पक्ष की अपेक्षा प्रतिभा के चमत्कार की स्वीकृति है। 17. भारतीय काव्य सिद्धांतों में कुंटक का वक्रोक्तिवाद उद्दात का सर्वाधिक निकटवर्ती है। उद्दात के पांचों स्रोत कुंटक की सरणी में वर्तमान है। लोंगिनुस जिसे विचार कहते हैं वह कुंटक की भाषा में अर्थ है। भाव दोनों के यहाँ है, भाव की प्रबलता या सांद्रता ही रस है। अलंकार भी उभयनिष्ठ है। हाँ, कुंटक में अलंकारों की संख्या लोंगिनुस से कुछ अधिक है। हमने पहले भी कहा है कि भारतीय काव्यशास्त्र में अलंकारों का प्रस्तार और विचार सूक्ष्म भी है और समृद्ध भी। लोंगिनुस का पद चयन कुंटक की पदवक्रता में गटार्थ हो जाता है और रचना की गरिमा कुंटक की वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता तथा प्रबंध वक्रता में। व्यावहारिक आलोचना की दृष्टि से भी कुंटक अस्पृहणीय है। संस्कृत के आलोचकों में काव्य के उत्कर्षाकर्ष का जैसा निरूपण उन्होंने किया वैसा किसी दूसरे ने नहीं। अन्य आचार्य उदाहरण देकर ही संतुष्ट हो गए। कुंटक ने उदाहरणों के गुण दोषों का विश्लेषण कर कथ्य को विशद किया है। कुंटक की व्यावहारिक आलोचना लोंगिनुस की व्यावहारिक आलोचना के समान विस्तृत नहीं है, पर तलस्पर्शी अवश्य है। उद्दात के जैसा वक्रोक्ति सिद्धांत भी सभी प्रकार के काव्य पर घटित होने की क्षमता से संपन्न है। उद्दात अभिव्यंजना का वैशिष्ट्य है, वक्रोक्ति भी अभिव्यंजना का वैशिष्ट्य है। लोकोत्तर आह्लाद दोनों का साध्य है, यह संकेत मात्र है क्योंकि विस्तार का यहाँ अवकाश नहीं है। रीज रॉबर्ट्स पेरी हुप्सुस की विशेषताओं का समाहार करते हुए कहते हैं, कुल मिलाकर अरस्तु के बाद कि किसी यूनानी लेखक द्वारा लिखित आलोचना की यह एकमात्र सर्वोत्कृष्ट कृति है। उद्दात स्वर, शैली विषयक उपयुक्त नियम, प्रतिभा के दोष, रुचि के मानदंड, प्रकृति के साथ कला और जीवन के साथ साहित्य के संबंध जैसे तात्विक प्रश्नों पर विवेकपूर्ण निर्णय, उद्धरणों के कोष के रूप में मूल्य, तुलनात्मक आलोचना का प्राचीनतम प्रबंध होने का ऐतिहासिक महत्व, प्रायः प्रत्येक यूरोपीय साहित्य को कुछ न कुछ प्रभावित करने वाला सौंदर्य शास्त्रीय ग्रंथ होने का गौरव, ये ऐसी विशेषताएं हैं जो इस कृति को हमारे आदर और प्रशंसा का अधिकारी बनाती है। रीज रॉबर्ट्स का उपसंहार वाक्य है, उन लोंगिनुस की गंभीर मानवता और व्यापक सहानुभूति ने पुराकाल की चेतना को आधुनिक बुद्धि के समक्ष प्रस्तुत करने में उनकी सहायता की है और प्राचीन यूनान के अंतिम महान आलोचक तथा किन्हीं अर्थों में बेहतर जगत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आलोचक के रूप में उन्हें साहित्य के इतिहास के अंतर्गत अस्थायी स्थान दिया है। सेंसबरी के इतिहास के निम्नलिखित उद्धरणों से मैं लोंगिनुस की आलोचना का उपसंहार करता हूँ। हाँ, जैसा हमने कहा है कि वे अकेले ही हैं। जब तक 1500 वर्ष पार कर हम कोलरिज तक नहीं पहुँचते तब तक उनकी श्रेणी का दूसरा आलोचक हमें नहीं मिलता। अपने वर्ग की सभी कृतियों के बीच यह कृति शीर्षस्थ बनी रहती है। यह ऐसे आलोचक की कृति है जो पहले के सभी आलोचकों की भूलों से कुछ न कुछ सीखता है और अपनी सहज प्रतिभा से वैसी चीज़ों का संकेत करता है जो बाद की अनेक शताब्दियों तक देखने को नहीं मिलती। समाप्त।